सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस सभा में बैठे हुए वैज्ञानिक साइंटिस्ट कितने हैं। अभी आ रहे हैं सभी, और बाकी सभी ऑब्वियसली ऑफिसर्स हैं। हम सब कल से साथ में हैं, एक ही घर में, तो आपको लग रहा है हम सब फैमिली हैं। हम जब इस हाल में आए तो हमको ये सेटअप, थैंक्स टू सिस्टर्स जिन्होंने भी ये सोचा है, मैंने बोला ये बहुत अच्छा है, इससे अपनापन फील होता है। ये थोड़ा सा ऊपर हम इसलिए बैठे हैं कि आप सब दिखें, बाकी हम भी नीचे बैठने के लिए तैयार, क्योंकि तभी फैमिली का मजा आता है। कल से हर एक वक्ता ने बहुत अच्छा बोला, इतने घंटे बिठा सकना चेयर पे, ये स्पीकर्स के ऊपर होते हैं। तो कल हमने देखा कि जितने भी, चाहे बाहर से आए हुए बाबा के बच्चे थे, चाहे पहले से ही जानने वाले थे, बहुत सुंदर सबने बात किया। उसका एक कारण ये भी होता है कि हम जिस प्लेस पे बैठे हैं उसका वाइब्रेशन, हम ये सब मानते हैं ना। तो जगर एक दिन में हमारे को इतना वाइब्रेशन फील हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा पढ़ाए हो, ऐसा लग रहा हम सब एक ही स्ट्रीम के, माना कुछ तो है। एक घर बनता है, एक अपार्टमेंट बनता है, सब सेम घर बनाते हैं, सेम होते हैं ना फ्लैट सिस्टम में, सब लगभग सेम ही होता है, लेकिन हर घर का वाइब्रेशन अलग अलग होता है। एक ही बिल्डर घर भी बनाता है, होटल्स भी बनाता है, हॉस्पिटल्स भी बनाता है। होटल में इतनी सर्विस अच्छी मिलती है, इतना कॉस्टली फूड होता है, कुछ कुछ फ्लेवर्स डाल के टेस्टी भी बना के देते हैं, फिर भी चार दिन होटल में खाने के बाद क्या लगता है, घर का दाल रोटी भी अच्छा लगता है। क्या है आखिर उस पर, घर में क्या है, घर का वाइब्रेशन, घर का प्रेम, घर की फीलिंग, घर में जो सुख की नींद आती है। बस कहने का मतलब इतना ही है कि जैसा वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला कौन है, क्रिएट कौन करता है, स्पेशली जो यहाँ पे साइंटिस्ट है वो बोलेंगे, वाइब्रेशन कौन क्रिएट करता है, जो वहां पे रहता है। अब हम सब मंदिर में जाते हैं, हम सब मंदिर में क्या सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। कोई मंदिर में बुरा बोले तो हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉट अ प्लेस, इजंट इट, कि ये प्लेस नहीं है, आप गलत यहां नहीं बोलो, पहले बाहर चलो। तो सभी ने क्या सोचा, ये मंदिर का है, ये मंदिर है, यहां हमको क्या सोचना है, अच्छा सोचना है, ऊपर वाले के बारे में सोचना है। तो हमने क्या बना दिया उसको, एक पॉजिटिव एनर्जेटिक प्लेस बना दिया, बनाया तो हमने ना। घर किसने बनाया, हमने। होटल का वाइब्रेशन किसने बनाया, हमने। थिएटर कौन बनाया, हमने। माना हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम मींस व्हाट, ये तो आपको क्लास में मिल गया होगा, सुबह सुबह पहला लेसन मिला ना, मैं कौन, यहां भी टेस्टिंग है आपकी सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे तो मैं कौन, मैं एक एनर्जी है ना, जो सोच सकती है, जो सोच को बदल सकती है, जो सोच से वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती है। बस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतना ही चैलेंज है कि जो भी जिस भी कार्य में है उसमें अगर अपना मन चेंज करे तो सब चेंज हो सकता है। तो क्या खेती चेंज नहीं हो सकती। हम ये देखते हैं कि जो जो अपने घर में थोड़े भी प्लांटेशन होता है ना, मैं रोम गई थी, वहां पे एक डॉक्टर भाई था, उसका प्लांट मर गया था लिटरली। वो बोलता है मैं रोज 1 मिनट मेडिटेशन करने लगा प्लांट के सामने, वो जिंदा हो गया बोलता। प्रैक्टिकल, हम लेटेस्ट गोवा गए थे, दीदी को मैं ये बता रही थी कि मैं गोवा को रिटर्न देने आई हूँ, ऋण चुकाने आई हूँ। सिल्वर जुबली था हमारे गोवा के सेंटर का, दीदी वहां के इंचार्ज है हमारे, सुनंदा दीदी। तो वहां पे मैंने उनको यही बताया कि मैं गोवा टू पुणे तक एक यूनाइटेड नेशन से बैन आई थी, तो हमारे वाइस चेयरपर्सन राजू भाई जी ने बोला कि उसको लेके जाओ और सारी फार्मिंग्स देखो जो योगिक खेती कर रहे हैं, उनसे इंटरव्यू लो, और इंटरव्यू लेके उसकी पूरी डाटा, हमारे सुमंत भाई जो हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं वो भी हमारे साथ थे, तो हम लोगों ने वो डाटा पूरा कलेक्ट किया, प्रैक्टिकली फार्मर्स से मिले, फार्म्स देखे। उसका एक दो एग्जांपल आपको बताती हूँ, फिर इस प्रोग्राम को हम आगे लगाते। तो वहां पे सबसे बड़ी बात थी कि हम एक प्लेस पे पहुंचे, एक फार्म पे पहुंचे जहां पे फली का प्रोडक्शन था, मूंगफली। और मूंगफली मुझे नहीं जमती, मूंगफली खाने से वात बोलते ना, तो मुझे सर में दर्द होता है, वो सर को पकड़ता है वो गैस, तो इसलिए मूंगफली मेरी फेवरेट है बट मैं खाती नहीं हूं क्योंकि ये सर पकड़ेगा बोल के। अब वहां जब हम पहुंचे वो एक 1:00 ऐसा टाइम था, बिल्कुल घूम के जाओ तो जरा ऑक्सीजन अच्छी मिलती है तो भूख भी अच्छी लगती है, बरोबर भूख भी लगी थी। और उन लोगों ने क्या किया, उनको नहीं मालूम था हम कब जाने वाले, कब पहुंचे, तो उनको ये ज्ञान नहीं था कि हम इस टाइम पे पहुंचने वाले, तो फिर भी कोई आता है तो कुछ खिलाते ना, तो उन्होंने मूंगफली को बॉयल करके रखा और मूंगफली को सेक के रखा था। हमको तो बहुत अच्छा लगा, अभी भूख तो लगी है, मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे क्या लेना है इसके लिए, पहले मूंगफली खा लेते हैं। और मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं, मुझे सर दर्द नहीं हुआ, ताली तो बजाओ। माना अगर योग के बल पे विदाउट केमिकल अगर अच्छे वाइब्रेशन से कोई चीज उगाई जाती है, आपको देखो कितनी मदद करती है। प्रैक्टिकली मैं शॉक हो गई, सच्ची बोलती, इट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे कोई भी केमिकल मेरे स्किन को सूट नहीं होता है। हम एक दूसरे खेत में गए, वहां पे जैसा ही पहुंचे तो वहां पे बरसात पड़ी। अब दूर चले गए थे, वापस आने तक तो गीला हो जाता है तो पैर में मिट्टी लगती है, तो मैंने बोला अब तो पैरों में खुजली शुरू होगी। बाजू में खेत है जहां केले हैं, और केलों में वहां पानी नहीं है, इतने अच्छे केले, ये क्या जादू है। प्रैक्टिकल को तो प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है ना। अब साइंटिस्ट बोलेगा प्रूफ बताओ, अब मैं क्या बताऊं, मेरा खुद का अनुभव है। नहीं है, कल भाई साहब बता रहे थे कि चीनी, लेटेस्ट हमारे जो डिस्कोर्स चलता है उसमें था, चीनी मीठी है, अगर आपने खा ली पूरे के पूरे बैठने वाले बोलेंगे चीनी कड़वी रहती है, आप मानोगे, लाख लोग भी बोलेंगे आप नहीं मानेंगे। अब आज की जो ये हम सभा, हम सब मिल रहे हैं स्पेशली साइंटिस्ट और हमारे ऑफिसर्स से, कि इतना सुंदर जो ये कार्य चल रहा है इसमें हम आपसे योगदान चाहते हैं, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि संसार बहुत सुंदर प्लेस हो रहने के लिए, हम सबकी इच्छा है नहीं है। अगर छोटे बच्चों को भी अगर हम कहें कि भाई आप कैसा इस संसार को देखना चाहते हैं, तो आप एक मिनट के लिए सब आंख बंद करें और सोचें कि संसार कैसा होना चाहिए, तो आपको क्या आएगा, कोई बताना चाहे, एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और हाउ वुड यू लाइक टू सी दिस वर्ल्ड, कैसा देखना चाहते हैं संसार, स्वर्ग के जैसा, ताली तो बजाना इसके लिए। स्वर्ग में क्या है, एक दूसरे को देख के तो अच्छा लग रहा है, एक दूसरे के औरा में रहना पसंद आ रहा है, क्यों, सब अच्छा सोच रहे हैं, प्रकृति सुंदर है, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, ये स्वर्ग के लिए बोलते हैं। मान अपोजिट नेचर है लेकिन प्रेम के कारण कितना क्लोज है। तो अल्टीमेटली जो हमारे अंदर क्वालिटीज है ना, इनेट क्वालिटीज, आपने सुना होगा कि पवित्रता, प्रेम, मैं मालूम है इस विंग के साथ जुड़ने का कारण, मुझे जब बताया गया कि आपको आना है, गोवा में ही पहली मीटिंग थी, तो मैंने बोला मैं हैदराबाद में रहती हूँ, मैं गांव की सेवा में क्या योगदान दे सकती हूँ, तो बोले अच्छा गोवा घूमने आ जाओ। और वहां पे एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया, उसने कहा कि मेरा जो है ना, मेरे पास कैटल्स हैं, गायें भैंसे सब, तो शेड रहता है सिर्फ, उसको बहुत लॉस हो रहा था, गायें दूध ही नहीं दे रही, वो कहानी सुन के मैं यहां पे जुड़ी हूं, तो वो गायें दूध ही नहीं दे रही हैं, अब वो कोई बोलता है तेरा वास्तु खराब है, शेड को क्या वास्तु नहीं, वास्तु वाला बोलता है वास्तु खराब है, कोई बोलता है तेरे ग्रह खराब, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा, कोई बोल रहा है बिल्कुल डेमोलिश करके ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, माना खर्च की बातें। पहले ही बेचारे के पास प्रॉब्लम किसका है, दूध नहीं आ रहा, माना ऑलरेडी उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। उसको बताया गया कि हम जो है ना ओरिजिनल एनर्जी, वो सात गुणों से संपन्न है। जैसे शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, हमारी जो एनर्जी है आत्मा वो पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। उसने सिर्फ एक ही गुण लिया, प्रैक्टिकल बता रही मैं थ्योरी बात नहीं करती, प्रैक्टिकली बात करें आपसे। उसने जाके उस प्रेम के गुण को अपने गायों के ऊपर यूज किया, रोज सिर्फ उसको प्यार करता था, पीठ पे खाली गायों को बड़े प्यार से, दिल से, आत्मिक प्यार, जो ओरिजिनलिटी है हमारी। गुस्सा कितनी देर कर सकते आप, फिर ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि जैसे पानी का नेचर शीतलता है, हमारा नेचर पीस है। तो उसने बड़ा प्यार करना शुरू किया, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। ये आध्यात्मिकता है जो दिखाई नहीं सकती, पर प्रैक्टिकल उसका रिजल्ट है। तो हमारी आदरणीय मंच, हमारे बीच में हमारी सुनंदा दीदी, यहां से लेकर गोवा, कोल्हापुर से लेकर गोवा तक 22 प्लेसेस डिस्ट्रिक्ट है उनकी, 10,000 भाई बहनों के देखभाल करना, इतनी टीचर्स को यहां आना है, फिर भी गोवा में 25 साल हुए हैं, वहां तक जाना। और हमारी दीदी तो फ्लाइट में भी नहीं जाती, रोड ही ट्रेवल करती है, वो कितना टीडियस होता है, फिर भी हमेशा शांत शीतल। और सबसे बड़ी बात, लेटेस्ट ही उनको एनर्जी कंजर्वेशन में हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी के हाथ से पुरस्कार, और ऐसे अनेक पुरस्कार उनको मिले हैं अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में। तो इतनी महान हस्ती जिन्होंने पूरा जीवन 4 डिकेड से भी जास्ती हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी डेडिकेटेड लाइफ। तो इतनी सुंदर आत्मा हम सबके बीच में है, हम उनसे भी बहुत अच्छी आशीर्वचन लेंगे, बहुत अच्छी बातें सुनेंगे। हमारे साथ विनोद लाहुटी भाई जी हैं, जो जियो लाइफ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी एक बड़ी विशेषता जो मैंने आज सुनी कि इन्होंने वैल्यू बेस्ड अपनी जो कंपनी है उसको वैल्यू बेस्ड बनाया है। किस तरह से बनाया उनके मुख से ही सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ सिर्फ नहीं, भारत से बाहर भी अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिशियस जो सीड्स हैं उसका फैलाव कर रहे हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा जिसको भी कहीं अवार्ड मिल चुके हैं, तो बहुत विशेष, आप में से भी सभी विशेष होंगे, हम चाहेंगे कि आपका भी परिचय हमको मिले। और ये हमारी सुनंदा दीदी और हमारी जो मनीषा बहन है, ये महाराष्ट्र से हैं, और हम बहुत जोर से तालियां बजाना है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र ने ही हमको योगिक खेती दिया है। सबसे पहले जो हमारी सुनंदा दीदी के कनेक्शन में कोल्हापुर में इचलकरंजी एक गांव है, उसी के गांव के जो हमारे बाला साहब ने आज बताया आपको, वहां से हमारी मनीषा बहन ने उनको जो क्या बोलते हैं ना, सपोर्ट दिया। क्योंकि पहले पहले जब नई चीज शुरू करते ना, आपको केमिकल नहीं डालना और कीड़े आ गए, आपका मन हिल जाता, अरे मेरा पूरा फसल, पैसा दिखता है ना। तो उनको नहीं, केमिकल नहीं डालना, वो हिम्मत देने वाला, उस हिम्मत से उनको सपोर्ट दे के आगे बढ़ाने वाला। नहीं तो अगर वो बंदा फेल होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते थे, ये योगी खेती की बातें नहीं करते थे। तो ऐसी हमारे फाउंडेशन डालने वाली, इनको भी काफी अवार्ड मिले हैं, और बहुत सुंदर अपना सेंटर इचलकरण जी के कनेक्शन में, हमारे सुनंदा दीदी के कनेक्शन में ही। तो महाराष्ट्र ने हमको बहुत दिया है, महाराष्ट्र ही हमारा फाउंडेशन बना, अब तो सभी स्टेट में फैलते जा रहा है। और उसी के महाराष्ट्र के हमारे खर्चे भाई, जो खर्च नहीं करता पर इन्वेस्टमेंट ही करता है। और आपको ये बताऊं कि हमारे खर्चे भाई ने, शिव खर्चे भाई ने, इसी जैसे आप आए हो ना मेहमान बन के, ऐसा मेहमान बन के आके मेंबर बन गया, घर का मेंबर। अभी आप सब हमारे घर के मेंबर बनना है, मेहमान नहीं, मेहमान हो गए अभी आप। तो उन्होंने कितना सहयोग दिया है, उसके बाद कितने प्रोग्राम किए। अभी भी सुबह को मिल रहे थे तो डिस्कशन कर रहे थे हमारे चेयरपर्सन के साथ कि कैसे हम वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इनको कहूँगी कि वो अपना अनुभव हम सबके साथ शेयर करें।
ओम शांति। नहीं नहीं आप बैठिए। ओम शांति। शरीर का नाम है डॉक्टर राम खर्चे जी। हम वही अभी करते हैं। डॉक्टर राम खर्चे शरीर का नाम है और हम जो है तो किसान परिवार से ही है। जैसे हमें तो बहुत गर्व होता है जब बद्री विशाल भाई बात करते हैं, वैसे ही हल चलाया, जमीन में से खरपतवार निकाले, मूंगफली निकालते थे, ऐसे खोद खोद के निकालते थे और दोनों वैरायटीज हमारे तरफ रहती थी। कई सारी बातें की, गए भी चराई और उसमें बहुत आनंद भी आता था। और इत्तेफाक से आप बोलो या ड्रामा अनुसार एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़े। दसवीं के बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नहीं थे। पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापन हुआ था पंतनगर का, बाकी जगह महाराष्ट्र में या कई जगह पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नहीं थे। तब 1967 में हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बने, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर टॉपर इन द यूनिवर्सिटी। गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, वो छोड़िए, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो मिलते रहते हैं। फिर एमएससी किया एग्रोनॉमी में, क्रॉप साइंसेज बोलते हैं उसको, जो साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स को भी सभी को मालूम है, एग्रोनॉमी में किया। और फिर परिस्थिति तो ऐसी थी कि नौकरी जल्दी करना है, तो इसीलिए जो भी जल्दी नौकरी मिले, लेकिन पहला विदर्भ का बोलिए, हम विदर्भ के रहने वाले हैं, यानी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, इट इज क्लोज टू नागपुर और यू कैन से क्लोज टू भुसावल। तो हम महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से हम परीक्षा दे दिए और डायरेक्ट क्लास वन में हम रिक्रूट हो गए। वो भी एक बाबा की आशीर्वाद थी, देन थी। और फिर चलते रहे और फिर कई पोस्ट शुगर फैक्ट्रीज के बारे में काम किया, कई शुगर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने पड़े, के अर्बन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, सब कोऑपरेटिव्स में बहुत सारा काम और एग्रीकल्चर रिलेटेड। बाद में फिर रिटायरमेंट के वक्त हम थे एडिशनल कमिश्नर एंड स्पेशल रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के डायरेक्टर महाराष्ट्र के। तो फिर वो हो गया, उसमें बहुत बहुत घूमे, देश विदेश में घूमे, 20 कंट्रीज में जाना पड़ा फॉर एक्सपोर्ट्स, फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। मैंगो एक्सपोर्ट जो इंडिया से हो रहा है, अमेरिका का प्रोटोकॉल जो है वो बाबा ने हमारे हाथ से सिग्नेचर करवाया है। यूरोप में गए, जर्मनी में एक एग्जीबिशन था, उसमें हमने मैंगो पर हमारा स्पीच था। ऐसे ही अपने बहुत सारे साइंटिस्ट थे, करीबन एंड एक्सपर्ट्स थे। हमारा नाम जो है ना, माय फादर्स नेम इज मैंगो, MANGO, इट इज एक्चुअली मांगो। बाबा ने कहा है ना, मांगने से मरना भला। लेकिन पुराने जमाने में जब बच्चे नहीं होते थे, माना हमारे दादा और दादी को बच्चा नहीं हुआ होगा, हमें बताया गया था कि मांग मांग के पिताजी तुम्हारे हुए हैं, इसीलिए उनका नाम मांगो रखा है। तो जब वो भाई हमारे देख रहे थे तो वो नाम तो फ्लैश होता रहा स्क्रीन बोर्ड पर। तो लेक्चर होने के बाद एक घंटा लेक्चर चला, हम ज्यादा बात करने की आदत है, ज्यादा बात करने की आदत है ना। हाँ वो हमें अभी याद आया कि घंटी तो बजने वाली है, तो हाँ अभी से 5 मिनट। तो फिर वहां बड़े हमें बहुत ताज्जुब लगा और अच्छा भी लगा कि वो बोले कि आप मैंगो में इतने एक्सपर्ट बन गए हैं कि आपको टाइटल मिल गया है मैंगो, राम मैंगो। तो हम बोले हाँ वो टाइटल भी समझो लेकिन है। उसके बाद हमने एक वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड बैंक का महाराष्ट्र एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट, ये इंडिया में 6 स्टेट्स में करना था, लेकिन वी वेयर द फर्स्ट, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने हमें बुलाया, हमें दे दिया। हम आई वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, वो रोल आउट हुआ और चला। उसका सक्सेस देखने के बाद बाकी के स्टेट्स में, गुजरात में भी हमने गाइड किया, फिर ओडिशा में गाइड किया था, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें फिर चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का जो रिसर्च काउंसिल होता है, महाराष्ट्र काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, हमारे नॉलेज से ये काउंसिल सिर्फ एक महाराष्ट्र में है, एक गुजरात में है, और कई जगह होगी तो हमें पता नहीं है, यूपी में भी है, ऐसे 3-4 स्टेट्स में ही ये काउंसिल है, लेकिन ये काउंसिल के मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। आई वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन एंड गिवन द स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर। ICAR ने ग्रांट्स हमारी बंद कर दी, क्यों? इसके लिए नहीं, 10 साल से उस हमारे चारों यूनिवर्सिटीज में करीबन ऐसा समझ लीजिए 350 पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर एंड हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द डायरेक्टर्स ऑफ रिसर्च एंड डीन्स देवर वैकेंट। ये काम हमने उनको जाके मिले ICAR में, राधा मोहन सिंह साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनको हमने ये दिया कि हम ये काम आपका जो है ये 6 महीने में पूरा कर देते। आई वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये जो बैकग्राउंड है इसमें बहुत सारे काम हुए, और रिसर्च का काम हमने एग्रीकल्चर को छोड़ा नहीं। जब हम ये चल रहे थे, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हो, शुगर कमिश्नर डायरेक्टरेट हो या मार्केटिंग डायरेक्टरेट हो, हमने एग्रीकल्चर का यानी रिसर्च जो है वो चालू रखा। दैट वॉज थ्रू द पर्सनल इनिशिएटिव, बाई पर्सनल इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का कोई इसमें ये नहीं था यानी ऐसा मत करो ऐसा मत करो। आपको बहुत सारों को पता है, आज तो बहुत आगे गए हम, लेकिन केली जो है अपनी, केली हमारे केली के पेड़ से निकालने के बाद अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीट करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं प्रॉपरली, तो केली जैसी की वैसी 44 डेज रहती है। ये पहले हमने मार्केटिंग बोर्ड में रिसर्च करके लोगों को बताया। आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि केली के पेड़ से निकालने के बाद 44 डेज जैसी की वैसी रहती है? उसको रखना पड़ता है 13 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको फिर 13 डिग्रीज पर अगर कोल्ड चेन में रखेंगे, दैट इज वाई बनाना कैन बी एंड नाउ इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज बाई शिप, जहाज से जा रहा है। ये सब करते करते भक्ति में तो थे, बहुत भक्ति करते थे, वो अभी ज्यादा घंटी बजने वाली है। तो हमें लगा कि अभी तो रिटायर हो गए, ये प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट होगा यूनिवर्सिटी का भी। तो यूनिवर्सिटी के जब हम वाइस चेयरमैन ये काउंसिल के थे, तब हमें बाबा का बुलावा आया। आपके दीदी ने बताया, हमारे दीदी ने, कि आपके सर के ही हम यहां आए थे, गेस्ट बोल के आए, लेकिन किसका बुलावा था? ये गेस्ट बोल के तो दीदी जी बोल रही है, इनका बढ़प्पन है बहनों का, हमारी दीदियों का, भाइयों का, कि हमें गेस्ट बोल के बुलाते हैं, लेकिन ये बाबा का बुलावा है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि इट इज एन ऑर्डर ऑल्सो। वो तो बुलावा है, घर का बुलावा है, लेकिन अपने जो लौकिक पिताजी है उनका भी हम सुनते हैं, उनका भी ऑर्डर मानते हैं। तो बाबा जब बुलाते हैं तो वैसा वो ऑर्डर भी है, उसमें प्यार भी है, और उसमें हमारे घर हम जा रहे हैं। भाई ने सच कहा, हम जब पहले बार यहां आए ना, तो ज्ञान सरोवर जो है ये एक्चुअली हमारे कई सीनियर भाई और बहनें बोलती है कि दिस इज हेवन ऑन द अर्थ, ये जो हमारी भूमि है इसका ये स्वर्ग है, ये ज्ञान सरोवर, इतना यहां आपको वाइब्रेशन सस्ते मिलेंगे, हमने ये सुना है कई अपने भाइयों से। तो फिर हम आए, और ऐसे ही एक प्रोग्राम में हमें बाबा ने और हमारे इन्होंने स्टेज पर बिठाया, तो जब हम ये सब देखा तो हम फौरन इसमें ज्वाइन हो गए, हमारा हमें बाबा का परिचय मिल गया जैसा आज आपको मिला, कोई डाउट नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति तो करते ही थे। जिसको पता ही ना नहीं था कि भगवान को मैं इसके आगे जाके झुको, उसके आगे जाके झुको, सब भगवान भगवान भगवान, पत्थर में भी भगवान, हम चिंतन करते थे, कनकन में भगवान, सिनेमा भी आया था, हम बोलते भगवान भगवान भगवान। जब कोई पता नहीं था तब भी हमें बाद में सच्चा पता चला कि आत्मा है, गीता में भी पढ़ा था आत्मा 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 अमर है अविनाशी, कैसा है क्या है कुछ पता नहीं, जब हमें यहाँ पक्का बताया गया तो डाउट की कोई बात ही नहीं, डाउट का कोई संबंध ही नहीं। तो निश्चय और हमारा जो विश्वास है, दीदी जी ने सवेरे बताया, हमें कोई पूछना चाहिए, लेकिन पूछते वक्त भी कैसा हम पूछे कि हमें, जिसको हम बोलते ना कि हमें वो नॉलेज कि हमें ये है, ये आस लगी है कि ये नॉलेज हमें मिले।
राम खर्चे भाई, मैं को ये पूछना था आपसे कि जब आप इस बात को समझे कि भाई ये योगी खेती को समझे, आपने भगवान के इस ज्ञान को समझा, तो आप जब मेहमान से भगवान के बच्चे बनने के बाद आपने किस तरह से सेवा की, क्योंकि हमारे जो यहाँ भाई बैठे हैं वो हम चाहते हैं कि आपके जैसा इस सृष्टि में कंट्रीब्यूशन देवे
जी। तो फिर हमने क्या किया कि हमारा, हम आए यहाँ 2015 में, 2016 में हम कोर्स किया 7 डेज का, एक एक घंटे का, जो आप यहाँ कर रहे हैं अभी, तो वो हो गया। और हमने ऐसा सोचा कि एग्रीकल्चर उस वक्त भी 2016 में, मान लीजिए कि ये बहन जी हमारे, दीदी जी हमारे, ये बाला साहब, ये शाश्वत योगिक खेती कर रहे थे, हम पर्सनली ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी विरोध में थे, हमारे दिमाग में पक्का था। आज भी इनडायरेक्टली कुछ बोलते हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं तो बराबर बोलते हैं उनके, क्योंकि एनालिटिकल रहता है ना, तो वो सोचते रहते कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे भाई बहने तो भूखे मरेंगे, हमारे देशवासी तो भूखे मरेंगे, कैसा मिलेंगे इतना अनाज, तो हमें भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब हमने देखा, इनके एक्सपेरिमेंट देखे, इन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स यूनिवर्सिटीज में ज्यादा हो नहीं रहे थे, चाहे डॉक्टर पांडे हमारे सुनीता बहन जी ने आए, वहां पंतनगर में एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद दांतेवाला में हुआ था, दांतेवाड़ा यूनिवर्सिटी में, और एक आधा दूसरा एक्सपेरिमेंट इधर उधर हुआ होगा, लेकिन रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ऐसा नहीं हो रहा था। तो महाराष्ट्र में पहली बार हमने 2017 में ही दापोली में कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली और मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी में साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, एग्रोनॉमी का स्टूडेंट, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, हमारे ट्रीटमेंट्स, रिप्लिकेशंस कितने चाहिए, एनालिसिस कैसा करना है, ऑब्जर्वेशन, ये सब हमने उनको गाइड करके ये यूनिवर्सिटीज में ये रिसर्च शुरू किया। ये दोनों यूनिवर्सिटीज में करीबन 2017-18 से रिसर्च चालू है, अभी देखिए 7-8 साल हो गए, ये चलता रहा, हर साल चलता रहा, ये बंद नहीं हुआ, लेकिन इसको फॉर्मलाइज करना था, क्योंकि फॉर्मलाइज करे तो उसका फिर रिजल्ट कोई मानता है, अगर यूनिवर्सिटी अपने अकेले अकेले कर रहे तो बोलेंगे इनका क्या, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, इनका क्या। तो फिर बाबा के घर से यहां से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हमारे रूरल डेवलपमेंट विंग के चेयरपर्सन सरला दीदी जी और राजीव भाई साहब और हमारे दीदी जी सुनंदा दीदी जी, इन सभी से इन्होंने एक डिस्कशंस करके, हमारे सुमन भाई जी, इन्होंने उसमें बहुत सारा गाइड किया, तो एमओयू प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम जो है एमओयू कर दिया, अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये रिसर्च जो है ये प्रॉपर रिसर्च यूनिवर्सिटी जिम्मेवारी क्या है और ब्रह्मा कुमारीज की जिम्मेवारी क्या है ये स्पेल आउट किया है, और वो उस तरीके से अभी 2 साल से परभणी में और लास्ट ईयर से दापोली में रिसर्च चल रहा है। बीच बीच में जाते रहते हैं, कभी जाना होता कभी नहीं जाना होता, लेकिन जाते हैं। बहन जी भी आए थे दापोली में, हम फार्म पर गए, सब हमने देखा कि कैसा कैसा क्या हो रहा है, यानी
डिफरेंट साइंटिस्ट भाई हमारे को किस तरह से सहयोग दे सकते हैं
जी,
उनको तो वो यही, क्या प्रेरणा देंगे?
नहीं, इनको हम यही प्रेरणा देंगे कि इन्होंने अभी अपने मन में ये तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि हे हम भगवान के घर से ये सुन रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली इंसान हमें बता रहा है, हमें तो जिसका नाम वाम मालूम नहीं उसके भी ग्रंथों में से हमने पढ़ लिया तो हम मानते रहे कि यही सच है। लेकिन यहां तो भगवान ये कैसे भगवान कहते हैं क्या कहते हैं ये सब जब आप आगे आगे जाएंगे इसमें तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब भगवान के घर में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ये भगवान की प्रेरणा से शाश्वत योगिक स्थिति का मॉडल यहां चालू हुआ है। 2008 में जब यहां बाबा मिलन जो होता है, अभी हमारे साइंटिस्ट भाइयों को शायद इसके बारे में नहीं पता लेकिन वो नहीं बताएंगे, तो जबकि भगवान स्वयं आते थे हमारे दादी के तन में, पहले बाबा के तन में आते थे ब्रह्मा बाबा के, बाद में दादी के तन में आते थे गुलजार दादी के, तब पूछा था कि क्या करेंगे इस वक्त नया क्या करेंगे, तो हमारे यहाँ के जो सीनियर बहन थी अपनी दीदी थी उन्होंने बताया कि योगिक खेती का हम इस साल अभी ये करने वाले हैं। बहुत उसको
बहुत अच्छा राम भाई बहुत अच्छा, बहुत 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 आप तो बाबा भी मिला दिए सभी को, तो ये तो पक्के बन जाएंगे पक्का।
तो ये विश्वास इससे ही
एक ही शब्द में अगर हम राम भाई जी का जो इतना सुंदर उन्होंने ट्राई किया कि सब कुछ बता दे मैं आपको, तो मैं एक ही शब्द में बोलूंगी निश्चय बुद्धि वैजयंती। जिस भी चीज में हमारा निश्चय है उसमें हमारी विजय है ही है। तो उनको ये निश्चय बैठ गया कि ये साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत महान कार्य है, ये भगवान का कार्य, ये भगवान का ऑर्डर है। और फिर उस कार्य में जो मानते ही नहीं थे, पॉसिबल ही नहीं, ऑर्गेनिक खेती को नहीं मानते तो योगिक खेती को कहां मानेंगे। तो ऐसे हमारे भाई को भी भगवान ने बहुत ज्यादा यूज किया, बहुत ज्यादा इन्होंने यूनिवर्सिटीज में बहुत सेवाएं की हैं, हम जानते हैं उनकी सेवाओं को, तो हम बहुत बहुत दिल से आपके आभारी हैं।
हम अभी एक मिनट लेते हैं और हाँ जी, अभी जी, अभी देखिए कमिश्नर एग्रीकल्चर, कमिश्नर शुगर, कमिश्नर कोऑपरेशन, कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री, कमिश्नर डेयरी डेवलपमेंट, MCR के वाइस चेयरमैन मिनिस्टर है, उनके भी DG, ये सब IAS टॉप कमिश्नर्स के लेवल के लोग हैं। हमारे मिनिस्टर पर्सनली एग्रीकल्चर मिनिस्टर महाराष्ट्र, ये सब आ रहे हैं और क्लास 1 तक के नीचे के हर डिपार्टमेंट के पुणे में काम करने वाले करीबन हर एक डिपार्टमेंट के 25-25 30-30 लोग, ऐसा 250 लोगों का एक कॉन्फ्रेंस इसका अभी तय हुआ है 19 जून पुणे में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पुणे के कॉलेज में ये हो रहा है और ये 3-4 घंटे चलेगा, जहां हमारे एग्रीकल्चर विंग के चेयरमैन वाइस अपने चेयरपर्सन हमारे सरला दीदी जी और हमारे वाइस चेयरमैन राजू भाई साहब आ रहे हैं मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे दीदी जी रहेंगे और महाराष्ट्र के एक टॉप लेवल ऑफिसर जिसने उसका पूरा जिंदगी एग्रीकल्चर में बहुत ही योगदान दिया है, ऐसे डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल SK गोयल जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बोल के रिटायर हुए हैं, ये सभी जो अभी के कमिश्नर्स हैं हमारे उनके सब उनके हाथ के नीचे काम किए हुए हैं, तो उन्होंने इस पर लीड स्पीच देने का मान्य किया है और वो भी आ रहे हैं, ऐसा परिषद हो रहा है हमारा 19 जून में बहुत ही अच्छा परिषद हो जाएगा ये, और ये सब बाबा करवा रहे हैं। कोई
पुणे के नजदीक रहते हैं, महाराष्ट्र के कोई हैं?
महाराष्ट्र के कौन है?
हाँ तो वो जरूर जाएं पुणे के उस प्रोग्राम में। अच्छा वेरी नाइस बहुत सुंदर
बिरना ले साहब ना बिनवड़ी
चलो बहुत सुंदर है, तो आप उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करेंगे, बहुत सुंदर और हमारी सबकी शुभ भावनाएं उस प्रोग्राम के लिए हैं, बहुत सफलतापूर्वक वो प्रोग्राम रहेगा और ज्यादा बाबा के बच्चे इस सृष्टि देखो है तो हम सब भगवान के ही बच्चे, बाबा माना बाप, पिता को हम बाबा बोलते हैं तो उस पिता के हम सब बच्चे हैं, हम सबका पिता परमात्मा आत्मा का तो एक ही है, तो सम पिता ने जो इस सृष्टि रची वो बहुत सुंदर रची, कोई भी मात पिता नया घर बनाता है पुराना कोई भी नहीं बनाता है, पर इन अ कोर्स ऑफ टाइम इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम नया पुराना हो ही जाता है, जब बहुत पुराना हो जाता है तो क्या किया जाता है, फिर से नया बनाया जाता है। बस अब भगवान आया है हम सब बच्चों का उंगली लेके एक गोवर्धन पर्वत को उठा के हम सबको सेफ रख के एक नया सृष्टि जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये स्वर्ग है, तो स्वर्ग कैसा होगा?
ओम शांति,
मुझे भी ओम शांति करवा रहे। थैंक यू राम भाई, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया,
आपका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, दीदी का शुक्रिया,
सबका शुक्रिया। शुक्रिया में भी बहुत शक्ति है क्योंकि शुक्रिया पॉजिटिव एनर्जी है,
और ज्यादा टाइम लेने के लिए माफी
आपका शुक्रिया कि आपने तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि और हमारे सेशंस हैं 5:30 के बाद भी 6 बजे से, तो इसलिए टाइम हमारे को कम है। हम बहुत जनों से सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। तो इस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम विनोद लाहोटी भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना वक्तित्व पेश करें।
ओम शांति। यहाँ पे उपस्थित सभी देवियों और देवताओं को मेरा प्रणाम। देवताओं को बोलने से कुछ लोग के फेस पे एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग अपना 3 से 4 दिन का समय निकाल कर यहाँ पे आए, मतलब आपकी भावना कोई ना कोई यहाँ से ले जाकर देने की रहेगी, और जिनकी भावना देने की है वो सारे देवी और देवता हैं, तो आप सबको प्रणाम। मेरा इंट्रोडक्शन देता जाऊँगा, मेरी जर्नी यहाँ तक कैसे हम पहुँचे। तो ऐसे बिलोंग तो राजस्थान जोधपुर से करते हैं, लेकिन दादाजी 100 साल पहले हैदराबाद के पास एक छोटे से गांव में चले गए थे यहाँ पे जब ड्रॉट था। तो हमारा 1973 से वहाँ पे फर्टिलाइजर्स का बिजनेस है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सीड सब चीज़ पिताजी ने स्टार्ट किया था। मेरा एजुकेशन होने के बाद मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, कुछ साल काम किया, तो मुझे खुशी नहीं हो रही थी अंदर से, एक अलग सा गिल्ट फीलिंग हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि किसान आते थे बोलते थे कि मेरे खेत में बहुत कीड़ा लगा है, कुछ पावरफुल दवा दो।
लकी टू हैव अवर वाइस चेयरपर्सन राजू भाई जी, सभी उठ के जरा उनका स्वागत करेंगे।
मैं बता रहा था कि मेरी जर्नी यहाँ तक मैं कैसे आए, तो जैसे मैंने बताया हम एक बहुत छोटे से गांव तेलंगाना में 100 किलोमीटर दूर पे कोडंगल नाम के गांव से बिलोंग करते हैं। 1973 से फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का बिजनेस है, पिताजी ने स्टार्ट किया था। मैंने मेरे एजुकेशन के बाद बिजनेस ज्वाइन किया, 2-3 साल कंटिन्यू काम करने के बाद मुझे आनंद नहीं आ रहा था, अंदर दुख हो रहा था, एक घृणा अलग सी फीलिंग हो रही कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत कर्म हो रहा है, क्योंकि किसान आते थे बोलते थे कि मेरे खेत में बहुत कीड़ा लगा है, कोई पावरफुल दवा दो क्योंकि मुझे 2 दिन में हार्वेस्ट करना है। और वो लोग मिथाइल पैराथन जैसे, डाइकोफॉल जैसे अलग अलग चीजें लेके जाते थे, स्प्रे करते, जो कि डायरेक्टली जहर अन्न के द्वारा खाने वाले के अंदर जाएगा। मैं बोला उस बेचारे को तो पता नहीं है किसान को कि क्या ले जा रहा है, क्या कर रहा है, और मुझे पता है और मैं ये चीज दे रहा हूं, तो इसमें मेरा कर्म खराब होगा। तो अंदर से ये भावना दे कि कुछ ऐसा करे कि इस चीज से परिवर्तन ला सके। उसी तरह एक और चीज था कि आज हम जो अनाज खा रहे हैं उस अनाज में पोषण कम है और विष ज्यादा है या नहीं, न्यूट्रिशन कम है और टॉक्सिक केमिकल ज्यादा है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा एक था माइंड में चलता था कि आज हम 1 एकड़ में अगर खेती कर रहे हैं तो कितने जीवों की हत्या कर रहे हैं, कितने जीवों की कर रहे होंगे 1 एकड़ में कर रहे, तो करोड़ों लाखों करोड़ों, वो हर जीव के अंदर वही प्राण है जो हमारे अंदर है, उसके अंदर भी वही संवेदना है, वही नर्वस सिस्टम है, वो जहर पी के जब तड़प के मर रहा है, तो उस टाइम पे क्या वो किसान को फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के डीलर कंपनी वालों को या अधिकारियों को आशीर्वाद देगा? तो उसकी जो तड़प है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, उसका जो गुस्सा है, वो लाखों जीवों का ये जो गुस्सा दर्द वाला नेगेटिव वाइब्रेशन पौधा ग्रहण करके पौधे के द्वारा अन्न में आ रहा है और अन्न के द्वारा खाने वाले के अंदर जा रहा है, और जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, उसी के चलते आज समाज में इतना सारा क्रुएल्टी हो रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। तो कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जो इन सब चीज से बदल सके, तो ये संकल्प था। तो हमको कोई रिटायर्ड साइंटिस्ट मिले, देखो परमात्मा कैसे करता है, कोई रिटायर्ड साइंटिस्ट मिले जिन्होंने ऐसी चीजों पे R&D किया था कि जंगल में पाए जाने वाले माइक्रोब के एक्सट्रैक्ट से प्लांट की इम्यूनिटी न्यूट्रिशन स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए, तो उनके साथ परिचय हुआ, उनके साथ काम किए, R&D किए, कुछ चीजें डेवलप किए, फिर ऐसा लगा कि शायद ये यहां तक रोकने से नहीं होगा, इसको विश्व भर में ले जाना पड़ेगा, सिर्फ गांव में रह के नहीं होगा। तो घर में संकल्प आया, तो घर में प्रपोजल किया कि मुझे मुंबई जाना है, जबकि मुंबई में कोई रिलेशन नहीं, फ्रेंड्स नहीं, कोई हमारा ऐसा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था, पहले कभी गए भी नहीं थे, एक आध बार कोई शादी में गए हुए, लेकिन डिसाइड किया मुंबई जाना है क्योंकि मुंबई से वर्ल्ड पूरा कनेक्ट हो सकता है। तो वाइफ को बच्चों को छोटे थे लेके मुंबई शिफ्ट हुआ परिवार के अगेंस्ट में, क्योंकि वहां पे कई बिजनेस थे, संपन्न थे परिवार, दादा दादी पोता पोती के साथ खुश थे, फिर भी ये संकल्प के चलते गए मुंबई, कंपनी चालू किया, 3 लोगों से चालू किया 2008 में, और आज 600 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 22 राज्यों में विस्तार है बिजनेस, ऑफिसर्स है, 3,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, 40 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले साल स्पेन में अपना सब्सिडियरी खोला, ऑफिस खोला, और वहां पे अभी स्पेनिश टीम, जर्मन टीम, इटालियन टीम, पोलिश टीम हम हायर करके वहां पे इन चीजों को सबको बता रहे हैं कि कैसे हम जहर की खेती से पोषण की खेती की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, हम पोषण अच्छी देके पौधे की इम्यूनिटी बढ़ा के और उसका फसल अच्छा ले सकते हैं। मतलब पोषण यानी एक चीज हमने देखा है कि भारत में जो एजुकेशन आया है, हमको जो एजुकेशन सिखाया गया है वो संपूर्ण नहीं, हम सबको पता है। जो पहले हमारा था गुरुकुल सिस्टम में 1850 तक, उसमें बहुत डिटेल एजुकेशन थी, जो दीदी ने भी बताया आज, हमको लिमिटेड एजुकेशन है। मेरी बिटिया ने बायोटेक्नोलॉजी से बैचलर्स किया इंडिया में, बाद में मास्टर्स लंदन इंपीरियल कॉलेज में मास्टर्स इन अप्लाइड बायोसाइंस बायोटेक्नोलॉजी किया। वो बोलते जमीन आसमान फर्क है, वहां में इंडिया में हमारा 15 साल पीछे है, अभी आज भी उतना एडवांस स्टडीज वहां पे चल रहा है। उसके बाद में शिकागो में केलॉग्स में मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया, तो वो पढ़ाई जो जितनी एडवांस वहां चल रही है इंडिया में अभी तक है ही नहीं। हमको इंडिया में क्या सिखाया गया, आजादी के बाद की स्टोरी है, उसके पहले की नहीं है। आजादी के बाद 40 करोड़ पॉपुलेशन था, खाने पीने को भी नहीं था, मजबूरी थी और हमको केमिकल्स में शिफ्ट होना पड़ा, जो कि फैक्ट है, उस टाइम पे वो मजबूरी थी। लेकिन उसके पहले जो देश हमारा संपन्न था, पूरे विश्व में अनाज सप्लाई कर सके उतना संपन्न था, कोई जहर नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई हाइब्रिड्स नहीं, उसके बावजूद होता था, तो वो क्या था उसके, वो सब चीजों पे हमने अध्ययन किया, स्टडी किया। ये पता चला कि पौधे को सिर्फ मिनरल्स नहीं चाहिए, मिनरल, विटामिन, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत चीजें चाहिए हर स्टेज में। जैसे हमको एक थाली लेते हैं, हम लोग कोई भी राज्य की थाली खाएंगे, चाहे पंजाबी थाली हो, चाहे गुजराती थाली हो, या मारवाड़ी हो, या आंध्रा की मील्स हो, सब चीज कवर होता है उसमें, राइट? प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, विटामिन, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, अलग अलग चीजों से मिले, अचार से भी कुछ मिलेगा, पापड़ से भी मिलेगा, छान से भी मिलेगा, सब्जियों से भी मिलेगा। उसी तरह पौधे को भी सब चीज चाहिए, अगर वो चीज पूरा मिला तो पौधा बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है, उत्पादन भी अच्छा देगा, उसकी सेल डिफेंसिव सिस्टम अच्छी रहेगी, कीड़ा बीमारी लग ही नहीं सकता। उस चीज पे जब R&D किया, आज 150 से ज्यादा साइंटिस्ट है कंपनी में, जो नैनो टेक्नोलॉजी पे, माइक्रोबियल, लाइव माइक्रोबियल पे, माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट पे और वृक्ष आयुर्वेद पे रिसर्च करके सॉल्यूशन डेवलप किया है, वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स है। एक लाइन में डालेंगे, एक लाइन में नहीं डालेंगे, क्लियर देख सकते कि इसमें कीड़ा बीमारी लगी नहीं रहा बाजू के लाइन में। लेकिन हमको ये चीज पहुंचा ही नहीं गया, ये यूनिवर्सिटीज के द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये साइंस जब तक नहीं जाएगा लोगों तक तो पता ही नहीं चलेगा। तो वैसे करते हुए हमने पहुंचा, लेकिन ट्विस्ट कैसे है, देखिए जैसे हमने कंपनी चालू किया, एक चीज को बहुत हमने क्लियर किया पहले से, जैसे राम मैंगो कृषि जी ने बताया कि भगवान को भी मानते, हम भी पहले से बहुत मानते हैं, बहुत निष्ठा है भगवान को मान के हम आगे बढ़ रहे थे। और कंपनी को एक वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि हमारी कंपनी में किसी तरह का गलत काम नहीं होगा, वेबसाइट में लिखा हुआ है वैल्यूज पूरे, पॉजिटिविटी, गुड कर्मा, प्रॉस्पेरिटी, इनर पावर, इनर पावर यानी परमात्मा का एनर्जी, हैप्पीनेस, एथिक्स एंड प्योरिटी, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, इन वैल्यूज के पूरे दायरे में लक्ष्मण रेखा के अंदर कंपनी चलती। मैं पूरे 600 लोग को ट्रेनिंग देता हूं रेगुलर की ये करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कर्म, गलत करके हमको एक रुपया भी नहीं कमाना है, झूठ बोल के, चोरी करके, गलत करके, करप्शन करके हमको एक रुपया भी हमारी कंपनी में नहीं लाना है। 600 लोगों किसी को पूछेंगे वो बोलेंगे ये नहीं चाहिए हमको, हमारी कंपनी में नहीं चाहिए, क्योंकि गलत करके पैसा लाए और पैसा आज तक किसी ने भी अच्छे कार्य में इस्तेमाल नहीं कर पाए, धोखा देके, चोरी करके, करप्शन करके, लोगों को तकलीफ देके अगर पैसा लाएंगे हम, खाने पीने में लगाएंगे बीमारियां आएंगी, घर पे लगाएंगे घर में अशांति रहेगी, बच्चों में लगाएंगे बच्चे जीवन में जितना सक्सेस होना नहीं हो सकते, और किसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे लॉस हो जाएगा। जब ऐसी चीज काम ही नहीं आएगी तो लाना क्यों है, बहुत क्लियर है हमारा। तो भगवान ने अच्छी नैतिकता के साथ चल के भी बहुत दिया है हमको, जितना हमारे जीवन में चाहिए उससे कई गुना ज्यादा दिया। एक ही चीज का सोल्यूशन मुझे मिला नहीं है आज तक, शायद आप लोगों में पता, आप तो बड़े बड़े अधिकारी है, आप लोग को पता होगा कि जो कमाया पैसा है, ऐसा कोई बैंक है आप लोग के पास कहीं देखा है जिसमें इस जन्म में डिपॉजिट करे और अगले जन्म में लाके दे, ऐसा कोई है बैंक कि वो गारंटी करे कि हम ये पैसा उसके बैंक में डिपॉजिट करें अगले जन्म में लाके दे, ऐसा कोई है क्या? नहीं नहीं, धन की बात, अमाउंट की बात कर रहे, बैंक में अमाउंट में अगले जन्म में लाके देगा कोई बैंक, देगा कि आप डिपॉजिट करो अगले जन्म में देंगे, नहीं है। लेकिन वो पैसा कमाने के लिए हमने जो अच्छा बुरा कर्म किया वो साथ चलेगा। तो यहां बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए साथ में कर्म बैलेंस कम करेंगे तो नुकसान का सौदा है, साथ में चलने वाला गलत है और यहां रह जाने वाला अगर हम जमा कर रहे तो गलत है। तो यही विजन से हमने चालू किया, ये हमको कहां से मिला? हम ऐसे ही हमारे पत्नी बच्चे के साथ में आए थे, यहीं पे घूमने आए थे, माउंट आबू बाहर होटल में रुके थे, यहाँ पे जस्ट खाली घूमने के लिए आए थे। हमारे शशिकांत भाई ने हाथ पकड़ लिया, बोला कहाँ से आए आप? तो हम बोले शशिकांत भाई का काम है, पकड़ लिया कहाँ से आए? हम बोले मुंबई से।
ये भी हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ शशिकांत भाई,
मुंबई से। फिर ओरिजिनली बात चला था, तेलुगु भी आती है हमको, उनको भी आती है, फिर वैसे हमने बात किया। बोले फिर उन्होंने बोला अरे आप एग्रीकल्चर से, हमारा एग्रीकल्चर विंग का कॉन्फ्रेंस आप आइए। हम फिर कॉन्फ्रेंस में आए, वहां पे लगा कि अलग ही दुनिया है, तो हमको पता ही नहीं। वहां पे यौगिक खेती का परिचय हुआ, हमने बोला अरे इतने साइंटिस्ट है, उस टाइम पे परवनी यूनिवर्सिटी के थे साइंटिस्ट, वाइस चांसलर आनंद के थे, पंतनगर से थे, बहुत इंप्रेस हुआ। हम बोला इतनी चीजें चल रही है दुनिया में, हमको पता ही नहीं। तो हमने बोला हमारे रिसर्च सेंटर में, इसको पुणे में 5.5 एकड़ का रिसर्च सेंटर है जहां पे हमारे पूरे स्ट्रीम के साइंटिस्ट, एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी सॉइल हेल्थ सभी है। फिर तो उनको जाने के बाद बोला कि ऐसा यौगिक खेती के बारे में बोल रहे थे, तो बोले सर आप कहां लगाए सब चीजें, अब वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको तो ये चीजें भरोसा नहीं आएगा। फिर हमने कन्विंस किया, बोला आपके पास तो इतना बड़ा प्लॉट है, आधा एकड़ में करके देखो क्या होना है। कन्विंस किया, तो पूना सेंटर से हमको सपोर्ट मिला। वहां से उन्होंने बोला एक शॉर्ट टर्म क्रॉप देखते हैं, मेथी 3 महीने में पता चल जाएगा। तो बीज खरीदा उन लोगों ने, आधा बीज सेंटर में भेजाया, 3 दिन के लिए मेडिटेशन करके उसमें एनर्जी डलवाई और वहां पे सोइंग किए, ट्रीटेड अनट्रीटेड। जिसमें ट्रीटेड किया भाई जी खुद आते थे रेगुलर फार्म पे, विठल भाई जी। तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया। फिर भाई जी क्लास वन ऑफिसर थे, तो भाई जी रेगुलर आके वहां पे जिस प्लॉट में हमने मेडिटेशन वाला डाला है, बाजू बाजू में एक ही प्लॉट, वहां पे वाइब्रेशन देते थे रेगुलर, और वहां पे 19% का यील्ड ज्यादा है, बाकी सारा पैरामीटर सेम। फिर हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बोला सर रिजल्ट तो है लेकिन कुछ और भी हो सकता है रीजन, हमको रिकन्फर्म करना है। बोले करिए आप लोग। तो अगले सीजन में उन्हें अलग अलग क्रॉप पे किया, बहुत से अलग अलग फसलों में किया, सब जगह रिजल्ट अच्छा है। तो बोले सर ये तो काम कर रहा है अच्छा। फिर जब पता चला तो हमको नेक्स्ट लेवल करना चाहिए, बोले कि ये तो आपने तो खाली ऐसे देखा, अब ये एक काम करते हैं कि जो बॉटल आपकी फैक्ट्री में पैक हुई है उसको लाओ। तो 2 प्रोडक्ट हमारे ऑर्गेनिक के दिए हमने, लिक्विड का एक, पाउडर का एक, दोनों दो बॉटल निकाले, एक एक बॉटल वहां पे जगदम्बा भवन में रखकर वहां पे मेडिटेशन दिया गया। फिर इन लोगों ने साइंटिफिक ट्रायल किया सारे अलग अलग जगह पे, जलगांव में किया, सब जगह किया, और सभी में जिस बॉटल में वाइब्रेशन दिया हुआ था उसमें कहीं पे 18% 22% 40% तक यील्ड ज्यादा है, जीरो कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ नहीं है, खाली वाइब्रेशन से। हम तो व्यापारी बोले ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गए, R&D करके एक्स्ट्रा खर्चा करके करने से तो ये तो बहुत बढ़िया है। फिर हमने बोला इसको क्या करना चाहिए, फिर फैक्ट्री की सारी टीम को हमने योग सिखाया, राजयोगा सिखाया, और आज भी पिछले कितने 6 साल हो गए होंगे, हर दिन सुबह 150 के करीब लोग है, पहले जेंट्स के लेबर आते हैं, बाद में लेडीज की टीम आती है, बाद में आधे घंटे बाद ऑफिसर, 3 बैच में मेडिटेशन डेली होता है फैक्ट्री में, सभी लोग मेडिटेशन करते हैं और वाइब्रेशन देते हैं, और भगवान की कृपा है कि आज विश्व भर में कहीं पे भी आज तक एक बार भी प्रोडक्ट काम नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हमने बोला फैक्ट्री तक तो ठीक है, अब इसको आगे कैसे ले जाया जाए। तो आगे फिर हमने हमारी सारी टीम का राजयोग करवाया, अलग अलग स्टेट्स में हम जब भी मंथली MRM के लिए जाते थे वहां पे लोकल सेंटर से दीदी को बुलाना है, उनको कोर्स करना है, फिर धीरे धीरे कनेक्ट किया ऑनलाइन, हमको ऑनलाइन भी राजयोग कोर्स किया, जो लोग नहीं जा पाए ऑनलाइन भी किया, और उसके बाद हमने फिर देखा कि किसानों तक कैसे जाया जाए। जब हमारे किसानों की फार्मर मीटिंग्स होती है, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वहां पे लोकल सेंटर से दीदी को लेके गए और उनको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन करने से वो नहीं होता है। हम अकेली कंपनी ऐसी है हमारी जो हमने देखा है कि लोगों को बोलते हैं अच्छाई के साथ चलो, अच्छाई काम करो और योग के साथ काम करो, और जहां जिन लोगों ने अपनाया उनको बहुत फायदा मिला। लेकिन किसी एक कंपनी से पूरे भारत के हर एक की थाली में से जहर निकल के पोषण युक्त विष मुक्त सात्विकन नहीं आ सकता, वो आना है तो हमको सबको जुड़ना पड़ेगा। सारे अधिकारी लोग जो है, जो अपने अपने लेवल से, बाबा ने आप लोग को यहाँ पे बुलाया, ने कोई मकसद से बुलाया होगा, आपको सबको चुना गया है, अदरवाइज कुछ लोग का ऐसा भी होगा कैंसिल हो गया लास्ट मोमेंट में, राइट। तो आपको चुन के बुलाया गया है, हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ बड़ा काम, अच्छा कर्म करवाने का सोचा होगा। आप सबकी कैपेसिटी है, आप लोग के अंडर में अथॉरिटी है, पावर है, नेटवर्क है, और नीचे तक किसान जुड़े हुए रहेंगे, तो आप लोग यहां से सोच सकते हैं कि किस वे में हम इस विद्या को जो लुप्त हो गई, पहले हर कोई इससे कनेक्टेड था, जैसे बताया था कल बद्री विशाल जी ने कि पहले जब खेती होती थी तो हल की पूजा होती थी, सारी जगह पूजा होती थी, हर जगह खेत में परमात्मा को बुला के आह्वान करके उस एनर्जी को लाके खेती होती थी, आज मिस हुआ है। तो हम कैसे योग को इसमें जोड़े, साइंस और स्पिरिचुअलिटी जब तक साथ में नहीं आएगा हम जो चाहे हमारा भारत समृद्ध फिर से हो नहीं सकता। और ये हमने सिर्फ अपने इसमें नहीं देखा, हमारे साथ जुड़े हुए कितने हमारे स्टाफ थे, अलग अलग कंपनी में भी गए, लेकिन उन्होंने जो योग अपने जीवन में अपनाया उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बोलते सर हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। कितने लोग हमारे मित्र हैं जो अलग अलग बिजनेस में हैं, अलग अलग जॉब कर रहे हैं, हर प्रोफाइल में हर जॉब में हमने देखा कि जिन्होंने अपने काम के साथ में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है उनके लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस मिला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यही मेरा आग्रह है कि आप सब यहां पे आए, सोचिए, विचार कीजिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे आपके द्वारा आपसे कनेक्टेड लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी, और सबसे पहले खुद में, फिर परिवार में, फिर आपसे जुड़े सारे जो प्रोफेशन में हम लोग हैं उस प्रोफेशन में, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से जुड़े, हम जाके कहीं पे आईटी के लोगों को चेंज नहीं कर सकते, हम जाके कोई हमको मेडिकल लाइन में नहीं कर सकते, हमको एग्रीकल्चर में भगवान ने जोड़ा है तो उसी लाइन में प्रयास करेंगे कि वहां पे हम कुछ अच्छा ही ला सके। उसी तरह सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में जहां जुड़े हैं वहां पे क्या परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे शुरू करना है, और किसी को कोई क्वेश्चन है, हो सकता है कि किसी को अभी ध्यान में नहीं आया कि क्या करे, आप आपका प्रश्न रखिए, आप जो चाहे आप बता सकते हो कि ऐसे करना चाह रहे हैं। सपोर्ट की सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई संस्था नहीं मिलेगी जिनके 5000 सेंटर है, हर गांव में हर जगह पे लोग मिलेंगे आपको जो वहां पे खुले दिल से खुद होके आके सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बस आपको कनेक्ट होना है, कनेक्ट करवाना है। तो वैसे अगर करके हम ये परिवर्तन ला सकते हैं, इस विश्व में पूरा बदलाव ला सकते हैं, और अनाज अगर अच्छा हो जाएगा, पोषण युक्त विषमुक्त सात्विक अन्न हो जाएगा, तो अन्न से मन बदलेगा, मन से सारा विश्व बदलेगा। यही हमारी आप सबसे इच्छा है कि इसको बहुत पॉजिटिव लीजिए, सोचिए और इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ओम शांति।
बहुत सुंदर व्यक्तित्व था। थोड़ा बाद में करेंगे, पहले आप सभी का सुन लेंगे, फिर लास्ट में आप प्रश्न भी करेंगे, हमारे बड़े भाई भी हैं तो आंसर देना भी इजी हो जाएगा। टाइम बहुत कम है और सुनना बहुतों से है, तो स्पेशली ये जो हमारे बीच में हमारे भाई साहब साइंटिस्ट आए हैं और अपने ऑफिसर्स आए हैं, हमारे साइंटिस्ट भाई रिसर्च करते हैं लेकिन उसका अप्लाइड साइंस तो हमारे ऑफिसर्स करते हैं, तो हमारे बीच में हमारे सुशील भाई हैं, सुशील प्रभाकर भाई, जो एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हो चुके हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ ऐसी पॉइंट्स हमारे बीच में रखें कि जो साइंटिस्ट और ऑफिसर्स को एक प्रेरणा मिले कि हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। प्लीज सुशील भाई, कमांडेड एस सुशील भाई, अपना भी थोड़ा और डिटेल में परिचय देंगे तो थैंक्स टू यू।
ओम शांति। दीदी ने जैसे बताया, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। पंजाब में हमारे एक ही वेटरनरी यूनिवर्सिटी है एनिमल साइंसेज की, वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज की। उसमें पहले तो मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहा था 1987 में, उसके बाद धीरे धीरे विद प्रमोशंस प्रोफेसर, और क्योंकि मैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट से था, मेरी मेन जिम्मेवारी जो वेटरनरी डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको टीचिंग के साथ साथ क्लिनिकल वर्क भी हम करते थे, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन था मेन वेटरनरी गायनेकोलॉजी का। तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। धीरे धीरे फिर विद प्रमोशंस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आ गया, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार सेवा करने का भी मुझे अवसर मिला। तो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लेकिन 2018 में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि जैसे कहते हैं ना कि बाबा खुद खींचता है आपको, तो उस सिचुएशन में हमारे एक ही इकलौता बेटा था, एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ, ही वाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट विद एयर फोर्स, एंड इन अ फ्रीक एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो उस समय लग रहा था कि अब जिंदगी जो है एकदम से शायद रुक सी गई, तो आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन बाबा ने, मैं तो यही कहता हूँ कि हमें एकदम से पकड़ा, मैं और मेरी युगल भी, वो भी यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर थे।
पूनम बेन थोड़ा उठ के एक बार सबको हेलो ओम शांति बोले, ये हमारी साइंटिस्ट है पूनम बेन भी,
ये अपना परिचय अगर मौका मिला तो दे सकते हैं। बट शी वॉज वर्किंग एज अ प्लांट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सॉयल माइक्रोबायोलॉजी पे इन्होंने काम करा, और दलहन पे शी वॉज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एट ऑल इंडिया लेवल, PAU में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो काम करते थे। तो बाबा ने हमें एकदम से जैसे पकड़ा अपने पास, आफ्टर ए मंथ इवन दैट इंसिडेंट, बुलाया, हम सेंटर पे थे और उसके बाद हम रेगुलरली जुड़ते ही गए। और इसमें मतलब मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूं, मुझे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कि बाबा ने इतना प्यार दिया और इतना हमें सपोर्ट करा कि हम संस्था के होके रह गए। धीरे धीरे हम क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े थे, 2019 में पहली बारी दीदी ने हमें यहाँ कॉन्फ्रेंस में भेजा, तो यहाँ पे आके हमें कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था योगी खेती का। और जैसे ही हमने मतलब सुना, अनुभव सुने लोगों के, भाई बहनों के, तो इसमें हमें लगा कि हमें भी खुद कुछ ना कुछ इसमें करना चाहिए। तो क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट प्रोफेशन एग्रीकल्चर नहीं, एनिमल हस्बेंड्री था, तो फिर भी मैं अपने मतलब अपने वर्क में, अपने ऑफिस में वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता था कि जो प्रत्यक्षता हो, सभी को पता चले कि मैं, अदरवाइज मेरा जो नेचर था बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो मैंने काम कहा वो विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, क्रिटिकल बहुत था। लेकिन धीरे 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 जो मेरे में चेंज आई तो लोगों को, वो खुद भी एक हैरान होते थे कि इसमें ऐसी चेंज क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। तो बहुत लोग आए भी, उन्होंने हमारे एक्सपीरियंसेस हमसे सुने भी और हमसे प्रभावित होके वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके भी हमारे पास आते रहे। तो मैं इन डिटेल्स में ना जाते हुए यही आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम अपने वर्क एनवायरनमेंट में जो भी हम कर रहे हैं उसमें विद क्लैरिटी ऑफ माइंड और विद कंप्लीट सरेंडर अगर हम होके करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो चाहे हम खेती कर रहे हैं, चाहे हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हमें टोटल इन्वॉल्वमेंट होके और सरेंडर होके अगर हम करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा राय नहीं है कि हमें सफलता ना मिले। सो इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
थैंक यू सो मच सुशील भाई। आप देख रहे हैं जो भी कॉन्फ्रेंस में आए वो कितने सुंदर बन गए, तो आप तो ऑलरेडी सुंदर हैं तो डबल सुंदर बन जाए, थोड़ा ताली बजानी चाहिए। तो अभी हम जो प्रैक्टिकल, हमारे भाई साहब की इच्छा है कि दो मिनट पूनम बेन एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट को हम चाहते हैं, क्योंकि अधिकारियों को बोलना इजी है भाई काम करो, लेकिन साइंटिस्ट जल्दी नहीं मानते, उनको दिखाना है। अब कैसे दिखावे, मेरे को आपसे बहुत प्यार है, प्रॉब्लम वहां हो जाता है। तो हम पूनम बेन से भाई साइंटिस्ट कैसे दिखा सकते हैं, तो हमारी पूनम बेन दिखाना है। अभी हम सोलन में साथ में थे, बहुत अच्छा लगा उनके साथ हमको।
ओम शांति। मैं भी किसी वक्त ऐसे आई थी जैसे आज आप लोग आए हो, और तो मैंने भी सुना बहुत फार्मर्स के एक्सपीरियंस थे, साइंटिस्ट के एक्सपीरियंस थे, कि अगर हम अपनी वाइब्रेशंस प्लांट्स को देते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, यील्ड बढ़ती है। तो उस टाइम मैं जॉब में थी और क्रिप के ट्रायल्स मेरे पास आते थे पल्सेस के, तो मेरे मन में हुआ कि ये करके देखेंगे तो पता चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि सोचने से सब कुछ हो जाएगा। तो जब मैं आई थी तो यही टाइम था, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप आनी थी वो चिकपी की आनी थी मेरे पास अक्टूबर नवम्बर में, तो मैंने अपने ट्रायल्स लगा दिए और थोड़ा एक ऐसा नॉन एक्सपेरिमेंटल एरिया रख लिया, और उस एरिया में मैंने अपने हिसाब से कुछ हिस्से को वाइब्रेशंस देनी शुरू कर दी और कुछ हिस्से को मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया कि ये गंदा है, ये ऐसे है, ऐसे। और पहले तो 3 दिन मैंने मेडिटेशन करी फील्ड में जाके, और सॉन्ग्स लगा लेती थी बाबा के गीत, और शीलू दीदी की कमेंट्री, सुबह ही चले जाना, तो उस टाइम मेरे हालात भी ऐसे ही थे कि लोग सोचते थे शायद मैडम यहाँ ऐसे घूम रही है, इसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, पर मुझे अंदर से पता था कि बाबा मेरे को शक्ति दे रहा है। और मैं मतलब रोज कॉलेज जाने से पहले वहाँ जाती थी अपने फील्ड में। और जब वो तीन दिन के बाद हमारा सोइंग का टाइम आ गया तो भी वो सीड वगैरह को सब मैंने वो जैसे जैसे यहाँ मैंने सुना था फिर आगे पढ़ा जाके और वैसे वैसे सारा कुछ किया। और मेरी उस टाइम कम से कम 30 साल की नौकरी हो चुकी थी और मेरी एमएससी पीएचडी भी 83 से मैं पल्सेस के साथ ही जुड़ी हूँ, मतलब सारा जीवन ही मेरा पल्सेस में गया। तो प्लांट्स लग गए सब, वहाँ जाके मेडिटेशन करना, रोज रोज ही जाना फील्ड में। तो जब हमारा उसका रीडिंग्स का ऑब्जर्वेशन का टाइम आता है तो हमारा तो नोड्यूलेशन के ऊपर मेन काम रहता है, तो हमारा मेन होता है नोड्यूल्स को देखना, और उसमें भी पिंक हेल्दी नोड्यूल्स जो कि लैग हीमोग्लोबिन आप बहुत सारे जानते होंगे कि उसके कारण वो नाइट्रोजन फिक्स करता है जो 98% फ्री पड़ी है अपने एटमोसफियर के अंदर। तो प्लांट्स ऐसे मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स की ली, फिर उसकी बारी भी आ गई तो उसके जब नोड्यूल्स निकाले तो मतलब मैं तो मतलब हाथ ऐसे रखा अपने सिर के ऊपर कि 110-120 नोड्यूल्स और सारे के सारे पिंक, जिसको काटूं वो गुलाबी, जिसको काटूं वो गुलाबी। और जो मेरे अपने ट्रायल जिसको हम एक्सेलेंट नोड्यूलेशन बोलते हैं, जो मैं जीवन भर बोलती रही हूँ, वो 60-70 अगर वो 60 से ज्यादा हो गए तो वो लाइन हम एक्सेलेंट में लेते थे, क्योंकि ब्रीडिंग के ट्रायल्स भी होते थे ना, तो उसमें भी हम सेग्रीगेट करते थे कि कौन सी मॉडरेट नोड्यूलेशन में है कौन सी एक्सेलेंट में है, तो वहां भी 60-70 से ज्यादा नहीं मिलती थी। तो ये सब देख के लगा कि ये तो परमात्मा का ही कमाल है कि इसके माइक्रोब्स को उसने इतनी शक्ति दे दी। जैसे अभी भाई साहब ने बात करी है कि वो जीवाणु करोड़ों में मरते हैं, तो वो सारे जीवाणु मेरी वाइब्रेशन से जीवंत हो गए, एक्टिव हो गए, और उस चीज ने मुझे टोटल बदल के रख दिया। फिर उसके बाद मैंने घर में इन ट्रायल्स को किया छोटे पॉट्स में लगा के, तो वहां पे भी मुझे फर्क नजर आया कि जिसको मैंने गंदा लिखा उसके ऊपर लेबल लगा दिए, पानी भी ऐसे करके देना, उसकी तरफ नहीं देखना, तो कहना कि तू तेरे से नेगेटिव वाइब्रेशन, दूसरे को बड़े प्यार से करना, तो वो प्लांट्स की भी जड़ें उनकी ग्रोथ वो सब भी बढ़ी। तो ये सब चीज ने मतलब मेरा पूरा पूरा विश्वास कर दिया कि वाइब्रेशन वाली कोई ऐसी चीज है। पर अब प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमें कुछ साइंटिफिक उसमें बेस नहीं मिल रहा जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि वो कैसे हमारी वाइब्रेशन को प्लांट जो है वो कैच करता है। अभी जैसे रमन, डॉक्टर रमन ने इस पे काम किया था, बोस ने, जेसी बोस ने, तो उन्होंने वाइब्रेशंस के ऊपर खूब काम किया है। तो उसके बाद हम वैसा कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसा मेटाजेनोमिक्स की कोई बात जिससे हम ये ढूंढ सकें कि कैसी वो कौन से ऐसी चीज है जो उसको एक्टिवेट करती है या कौन से माइक्रोब्स है उनकी जो है वो नंबर इंक्रीज होता है। तो ये एक गैप है जिसका हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और जो एक्टिव जॉब में है वो अगर हमारी संस्था में हमारी हेल्प करें तो हम जुड़ने के लिए तैयार हैं उनके साथ। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबके। ओम शांत।
रियली ब्यूटीफुल। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे नहीं जुड़ेंगे तो भी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप जुड़ना चाहेंगे हमसे, हमको जोड़ना चाहेंगे अपने आप से? जो नहीं चाहते वो हाथ उठाओ भाई, ताली बजाओ, सभी चाहते हैं। तो शुक्रिया आपका, बहुत दिल से शुक्रिया कि आप हमको अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो एक एक का बहुत महत्व है, आप बहुत विशेष हैं। आजकल ऐसा है कि कोई बाहर जाना ही नहीं चाहता, ऐसी सिचुएशन है हा? और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में जहां बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं सारे विश्व में, आप भगवान के चुने हुए रत्न हैं जो यहां पहुंचे हैं। तो आपका बहुत बहुत दिल से फिर से स्वागत है। और अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि मनीषा बहन, जिसने शुरू शुरू में जो एक्चुअल कार्य शुरू किया और उसमें इतने प्रॉब्लम्स आए और उन्होंने अपने योग बल से, अपने हिम्मत से कैसे उस चीज को चेंज किया, उनके अनुभव, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हम मनीषा बहन को चाहेंगे कि सागर को गागर, बोलती है गागर में तो बढ़ने दो, आप तो बोलते हो कि बॉटल के कैप में बढ़ो, तो सिचुएशन वैसा ही है कैप में बढ़ने जैसा मनीषा दीदी। तो मनीषा बहन भी बहुत हमारी राजयोगी योगी आत्मा है और प्रैक्टिकल आत्मा है।
ओम शांति। मैं पहले ये चाहूंगी कि योगिक खेती शुरू करने का भाव कब चालू हुआ? ये बेस बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी नई चीज होती है ना, जैसे संग्राम चालू हुआ, हमारा सत्याग्रह चालू हुआ, तो उसके भी पीछे कुछ न कुछ इतिहास है। इसी तरह शाश्वत योगिक खेती चालू होने के पहले का भी कुछ इतिहास है। तो मैं दो मिनट में ना, बड़ा इतिहास है लेकिन उसको थोड़े समय में आपको साझा करूंगी। 98 में मैं ग्राम विकास विंग से जुड़ी हुई हूँ। तो उस समय गांव का विकास के बारे में सब कुछ प्लानिंग चलती थी और गांव का ही उसमें प्लान होता था, लेकिन खेती का कुछ उसमें नहीं लिया जाता था। तो मुझे लगता था कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। 91 में मैं सेंटर में रहने के लिए आई और मैंने बाबा को कहा कि बाबा, जिस वजह के लिए तूने मुझे चुना है, मुझे साधारण ब्रह्मा कुमारी तो नहीं रहना है, लेकिन जिस वजह के लिए तूने चुना है, क्योंकि जो भी ब्रह्मा कुमारी आपके पास आएंगी वो बोलेंगी कि मैं पहले आध्यात्मिक थी, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी ऐसी थी कि पूरी नास्तिक थी, भगवान को ही नहीं मानती थी। तो मुझे जबरदस्ती 7 डेज के कोर्स के लिए मेरे पिताजी और दादी लेके गई थी। मुझे याद है सेंटर पे आने के पहले, मतलब ज्ञान में आने के पहले, श्रावण मास में दही चावल का शिवजी को मना ठंडा चढ़ाते हैं, तो दही चावल का लेप होता है, तो वो सब साहित्य लेके जा रही थी, तो मेरे पाँव में खिला लग गया। तो वो मना दादी माँ का ये था कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो पाँव में चप्पल नहीं डालना होता, वो साहित्य जब लेके जाते, मैंने पहले लोग ऐसे स्ट्रिक्ट थे, तो खिला मेरे पाँव में लगा, तो रास्ते में दादी माँ से झगड़ा चालू कर दिया, तेरा भगवान अब कहाँ गया है, उसके पास जा रहे तो उसने मेरे को खिला क्यों लगाया। तो ऐसे एक आत्मा जिसका पूरा जीवन परिवर्तन किया और मैं बच्ची बाबा की बन गई। 8वीं कक्षा में मैंने संकल्प किया, मना या आप सोच सकते हैं, तीसरी कक्षा हो गई थी और हम लोग ये बात हो गई। 3 साल में बाबा ने मेरा जीवन इतना परिवर्तन किया। 8वीं कक्षा में मैंने संकल्प किया कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी और 8वीं कक्षा में गई तो इचलकंज में एक भट्टी थी, उसमें कन्याओं की भट्टी रख के वहाँ का सेंटर खुला था, तो उसमें मैंने कन्याओं को सेंटर पे रख के कॉलेज करते हुए देखा। तो मैंने घर में जाके कहा मुझे कॉलेज करना नहीं है, सेंटर पे रह के मैं स्कूल में जाऊंगी, नहीं तो मुझे जाना ही नहीं है। फिर 10वीं 11वीं 12वीं दीदी ने मुझे परमिशन दी सेंटर पे रह के कॉलेज करना है। और 91 में मैं सेंटर पे आई और तुरंत सितंबर में एक विलास बकरे करके भाई आया, उन्होंने 250 गमले तैयार दिए और उसमें मेरे को हर चीज एग्रीकल्चर की जो जो बातें हैं वो मुझे उसमें उन्होंने सिखाई। पौधों से क्या साथ बातें कैसी करनी है, पानी देना है तो कैसे, मैं पाइप से पानी देते तो उन्होंने कहा आपके मुख पर पाइप लगाएंगे तो कैसे लगेगा, आपको कैसे आप करेंगे, तो उन्होंने कहा आप पाइप से पानी देते हो तो बीच में हाथ रखो, प्यार से हाथ रखो तो पौधों को नहीं लगेगा। तो ऐसी एक एक चीज मेरे को वहां उन्होंने सिखाई। फिर 93 में मैं दापोली में 3 मास रही, तो वहां सेंटर पे सब गोल्ड मेडलिस्ट आते थे, जो भी भाई बहने आते थे वो अभी भी वो अपने दापोली यूनिवर्सिटी में मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को माना जो अपनी छोटे पेशी से कैसे पौधे तैयार होते हैं सब वहां सीखा, माना मैं एग्रीकल्चर कॉलेज को नहीं गई लेकिन वो जो नॉलेज है सब मेरे को शिव बाबा ने स्टूडेंट के द्वारा सब सिखाया, माना पौधों को कलम कैसे करना है, कलम करते समय बातें कैसी करनी है। फिर 97 में क्या हुआ कि हमारे दीदी को एक एकड़ खेती मिली, मतलब 91 को मिली थी, लेकिन मेरे को भेजा 97 में वहाँ पे खेती देखने के लिए। तो वो खेती करते समय किसानों के सानिध्य में आ गई और उनकी मानसिकता, उनकी बौद्धिकता, उनकी कौटुंबिक हालत, वो सब समझ में। भले एक किसान की बेटी थी, लेकिन संपन्न घर से होने के कारण उतना चीज़ों का खेती का मालूम नहीं था। लेकिन 97 में जब उस खेत में जाने लगे और भाई बहने संपर्क में आए तो पूरा उसका नॉलेज हो गया। और 98 में इस विंग के जुड़ने के कारण तो मेरे को बाबा चुप बिठा ही नहीं दे रहा था। तो मुझे ऐसे लगता था, तो मैंने वो रासायनिक खत खत कैसे बनता है, फर्टिलाइज कैसे, उसका पूरा स्टडी किया वहाँ रह के। उसके बाद 2004 को बाला साहब भाई मिले। 98 से मैं सभी भाई बहनों से पीछे।
उधर उधर हैं आज तो सुने ना, उनका सुने थे आज। हाँ है ना, इधर ही है। ओम शांति।
तो 98 से मैं सभी भाई बहनों के पीछे लगती थी कि हमको योगी खेती करनी है। तो सब लोग कहते थे, मना नाम 150 आते थे योगी खेती करने के लिए। और जब मैं बोलती थी कि रासायनिक खत, कीटनाशक और तननाशक यूज नहीं करना है, तो मेरे को सब कहते थे, बहन जी आप जिस बात को छोड़ दो, ब्रह्मा कुमारी लाइफ अलग है और खेती की लाइफ अलग है, आप ऐसा नहीं करो। तो फिर मेरी मना 2003 को ट्रांसफर वहाँ से कुरुंदवाड़ साइड में हो गई। और मैं वहाँ जाने के बाद पूरा प्लान करके गई कि किसान के साथ मुझे जुड़ना नहीं है, किसान के साथ कुछ करना नहीं है, उनको क्या करना है करने दो, मुझे क्या करना है मुझे करना है। लेकिन अभी कुरुंद उनके साथ मुझे कुछ भी नहीं करना है। उसी समय रक्षाबंधन के समय अपने सुभाष पालेकर, वहाँ पे उनका 3 दिन का ट्रेनिंग था और वो वहाँ पे आए थे। तो वो एक भाई राधानगरी साइड में, मैं दीदी के साथ सेवा करती थी, तो उसको पता चला कि मैं वहाँ हूँ, तो वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ लेके गया। मैं ना बोल रही थी, मेरे पास अर्चना बहन, संगीता बहन थे, उनको लेके जाओ, नहीं आपको ही जाना है। मैंने कहा मैं बाहर राखी नहीं बांधूंगी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ कुछ वो भाई बोलेगा और फिर मेरे अंदर चालू होगा तो फिर मैं योगिक खेती के पीछे पड़ जाऊंगी। तो उस वो करीबन 1500 किसान लोग वहाँ इकट्ठे आए थे। तो सुभाष पालेकर भाई को मैंने स्टेज पे, उन्होंने कहा नहीं मुझे बाबा का परिचय पूरे हॉल किसानों को देना है, और उन्होंने एक ही शब्द वहाँ पे बोला कि आध्यात्मिक खेती का जनक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। और उन्होंने मुझे एक किताब दिया, नेचुरल खेती का मुझे उन्होंने एक किताब दिया। और उस किताब मैंने 2 मास वो किताब हाथ में नहीं लिया, क्योंकि अंदर में मुझे किसानों से जुड़ना नहीं था। लेकिन कहते ना, नर चाहत कुछ और ईश्वर चाहत कुछ और। तो जब वो किताब मैंने हाथ में लिया, देखो क्या, तो वो वही पन्ना खोला जिस पन्ने पे लिखा था आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, उस समय जो वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं उससे समस्त सृष्टि और पौधे चार्ज हो जाते हैं, उसको ही आध्यात्मिक खेती कहा जाता है। और उस संकल्प से फिर मैं खड़ी हो गई। फिर एक मीटिंग में, इचलकंजी में मीटिंग थी, तो उसमें बाला साहब भाई मिल गए और बाला साहब भाई को पूछा कि आपके पास कितनी खेती है। तो उन्होंने कहा 11 एकड़ है। तो क्या आपका शुभाबा से प्यार नहीं है, आप थोड़ा 20 गुंटा तो हमको नहीं दे सकते हैं? ऐसे करके उनसे जबरदस्ती से 30 गुंटा का खेती ले ली। और वहां से फिर हमारे, और उस समय कुछ भी बीज बाबा के कमरे में रखना है, ये करना है वो करना है, कुछ भी विधियां नहीं थी। उन्होंने कहा आप जैसे करना चाहते करो, माना दवा जाओ आप, और जो मेडिकल वाले होते उनसे, आयुर्वेदिक वाले सब पूछो खाद वगैरह वो डालो और हम योग करेंगे और योगी खेती शुरू हो गई। तो उन्होंने माना खाद जो है वो डाली, लेकिन उनका भी उन्होंने मन में ये सोचा था कि बहन माना थोड़ी ये है तो 3 मास वो प्रयत्न करेगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो मैं निकाल के फिर से लावन कर दूंगा। इस हिसाब से बाला साहब भाई ने हमको खेती दी थी, माना उनका भी पूरा विश्वास नहीं था। और ऐसा हुआ कि वो सेकंड नंबर का गन्ना था उनका, उन्होंने सुबह आपको अनुभव बताया कि पानी कैसे है क्या है, उनमें वो उनका विश्वास नहीं था। तो क्या हुआ कि मई मास में पूरा गन्ना पीला हो गया। अभी क्या करना है कैसे करना है कुछ मालूम नहीं था। और हमारा 2004 को अकाउंट जो चालू हुआ था कंप्यूटर से चालू हुआ था, तो दूसरी एक सुनीता दीदी वो देखती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बाला साहब भाई को पूछा कि क्या कर कैसे अब हमारा गन्ना कैसा है। हम तो बाबा को बताते थे कि अच्छा गन्ना आने दो, कोई ही रासायनिक खाद नहीं डालना होगा। तो उन्होंने कहा मेरा पीला गन्ना हो गया है, मैं रासायनिक खाद ला के रखा है और आप भी जाके मैं नाश्ता करके डालने वाला, आपको जो करना है करो। मैंने कहा रुको आप आज कुछ नहीं करो, मैं शाम को आ जाती हूँ देखती हूँ फिर आप करो, अभी क्या करना है मालूम नहीं, खेती का इतना नॉलेज नहीं है। तो खेती में जाके 5:30 बजे जब भी ट्रॉपी कंट्रोल है इसमें उस समय जाके मैं और आशा दीदी बैठ गए और बाबा को मैंने कहा बाबा एक बच्चा दिया है 1998 से हम पीछे पड़े हैं योगी करना, एक बच्चा दिया वो भी ऐसा दिया है जिसका तेरे पर विश्वास ही नहीं है, अब मैं क्या करूं बताओ आप। तो बाबा ने कहा बच्चे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा संकल्प है कुछ नहीं हुआ है, ये MLA के आगे खेती है ना, ये लोग जाते आते हैं, इतने सालों में सेकंड नंबर का गन्ना अच्छा हुआ है ना, तो बुरी दृष्टि लग गई है। तो मैंने योग करने के बाद कहा कुछ नहीं हुआ है आपको, आपके खेती में बुरी दृष्टि लग गई है और पवित्रता के आप भी आओ, हम और एक बार पवित्र का 2 मिनट वाइब्रेशन देंगे। और वो कहने लगे ओ जैन साइंसवादी, तो बाला साहब बेंच क्या बता रहे हैं आप, दुनिया कहाँ जा रही है और कहाँ कुदृष्टि का कुछ लेके आए हैं। तो मैंने कहा देखो भाई जी आपका विश्वास हो या ना हो ना, आज रात को ना बारिश हो जाएगी बहुत और कल आपका हरा भरा गन्ना हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बारिश तो रात को नहीं हुई लेकिन ना बिजली बहुत चमक गई और तीसरे दिन पूरा गन्ना हरा भरा हो गया। और 6 मास के बाद पता चला एक बार बिजली चमकने से 30% नाइट्रोजन हवा में माना जमीन में स्थिर हो जाता है और वो यूरिया का काम करता है, नेचुरल यूरिया का काम करता है। तो हमने पहले प्रयोग किए और उसके बाद साइंस आप लोगों ने उसके रिजल्ट दिए, उसके रिजल्ट दिए हैं। तो ऐसे हमारी योगी खेती की शुरुआत हो गई। उसके बाद 2005 को पूरे महाराष्ट्र के अंदर व्हाइट मिनी बस आया था, करोड़ों खेती जलाई गई, लेकिन हमारे बाला साहब भाई के खेत में ये भाई बैठे और मैं बैठे इतना ही बीच में रास्ता था और हमने पूरा बाबा की मना ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में आए हैं, शिव बाबा है उसके साइड में बैठे हुए और उनके आंखों से पवित्रता की तेजस्वी मना इतना तेज फव्वारे जा रहे पवित्रता के और पूरा पत्ता पवित्रता से भरा हुआ है। ऐसा अनुभव करने से वहां का जो प्लॉट था गन्ने का वो जलाना पड़ा और हमारे इसमें आके बैठता था एक सेकंड भी बैठ नहीं सकता था। तो ये 2005 का अनुभव है हमारा। अभी आपको मैं दापोली यूनिवर्सिटी का अनुभव बताती हूँ क्योंकि आप सब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो मैं दो दापोली के अनुभव बता के मैं बंद कर दूंगी क्योंकि ये सुनना आपको जरूर है। दापोली यूनिवर्सिटी में 2017 को लौकी का चालू किया हमने, लौकी योगी खेती का चालू किया। योगी खेती का 3 दिन बाबा के कमरे में रख के फिर उसको स्ट्रे में लगाए, जैसे 4-5 स्ट्रे थे। जब लौकी के बीज ऊपर आए तो सभी बाकी के जो बीज थे उनके बीज के साथ साथ उस बीज का जो ऊपर का कवर होता है वो आ गया। और हमारे योगिक खेती के बीज एक दिन लेट आया लेकिन उसको कवर नहीं था। तो वहाँ पे उस समय गीता बहन रहती थी, उसका फोन आया। पहले दिन भी आया कि हमारे वो ट्रे में खाली मिट्टी फूंक गई है, मैंने ऊपर आई है लेकिन पौधा बाहर नहीं आया है। और दूसरे दिन आया कि हमारे पौधे तो बाहर आ गए है, उनसे उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, उसका जो मना पूरा पत्ता भी ज़्यादा था, जाड़ा था, लेकिन एक भी उसको कवर नहीं था। तो उसने कहा कि एक दिन लेट आया, उससे भी ऊंचा है और कवर नहीं है, क्यों हमारे पौधों को कवर नहीं है। अभी मैं तो आपके जैसे साइंसवादी नहीं हूँ, प्रयोग का कुछ पता नहीं है, तो मैंने उसको कहा कि आधे घंटे में आपको मैं जवाब दूंगी। तो मेरे पास एक भाई है जिसको महाराष्ट्र में उन्होंने खेती में गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किए, उनका नाम है कालेकर भाई करके है, FM में उन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया है, अभी 2-3 मास रिटायर हो गए हैं। और वो बहुत मना एग्रीकल्चर के बारे में जो भी मना वैज्ञानिक बातें जो है आप सबकी वो उन्होंने मुझे सिखाई है। मना जब जब मुझे प्रॉब्लम आते गए तो मैं उनसे कनेक्ट हो गई, फिर उन्होंने एक बार मेरे को बुला के पूरा आपका साइंस मना जो है वो सब मेरे को मराठी में अच्छी तरह से समझाया। तो उनको मैंने फोन किया कि क्या हुआ है, कि हमारे इसको क्यों नहीं कवर आया है। तो उन्होंने कहा बहन जी, रासायनिक खाद चालू करने के बाद पहली बार दापोली यूनिवर्सिटी में आपके ये कवर नहीं आए है, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया ये रिजल्ट मिला है, तो वीडियो और फोटो निकालने के लिए बोलो। तो मैंने कहा निकालेंगे तो है लेकिन आप उसका रीजन। तो उन्होंने कहा कि ये इतना हेल्दी पौधा निकला है, आने वाले समय में प्राकृतिक कितनी भी आपदाएं लेकिन इस पौधे को कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और 2 मास के बाद दापोली में इतनी बरसात हुई, सम्राट लौकी का वो बीज था पूरा, वो लोग पूरा जमीन पे फैला हुआ था, करीबन 12 दिन वो पौधा पानी के अंदर 1 फीट नीचे था, पानी ऊपर से 1.5 फीट पानी बहता रहता था, लेकिन पूरे जो भी थे वो मना रहे नहीं पौधे, लेकिन अपना योगी का पौधा पूरा 100% जिंदा रहा। उसके बाद वो जो रहा उस पानी में लौकी रहते हुए भी वो काला दाग पड़ता है, कुछ नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट ने उसका पूरा फिर वो देख के उनको बहुत खुशी हुई, फिर उन्होंने किस निकाल के रखा तो 12 घंटा किस मना कुछ नहीं हुआ, जैसे कि वैसा 12 घंटा जूस जैसे कि वैसा। तो वो एक रिपोर्ट इतनी अच्छी बनी हुई है, आप राम खर्चे भाई से वो रिपोर्ट आप ले सकते हो, हम जो बता रहे हैं वो गलत लग रहा है तो उनके पास वो सब पूरा रिपोर्ट है, आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये एक चीज की योगी खेती का ये, और इसीलिए वहाँ पे लगातार योगी खेती दापोली में हो रही है। और दूसरा, अभी हमने धान लगाया था उसमें एक कीड आई थी जिसको मराठी में बोलते हैं कि वो कीड जो होती है ना वो पूरा जूस पी लेती है हाँ। तो वो बहने अमृत वेला उन पूरे पौधों को वतन में इमर्ज किया, 4 दिन इमर्ज किया, 4th दिन पूरी कीट निकल गई, एक भी कीट नहीं रही। उसके बाद बरसात हुई तो कटाई के बाद का प्रयोग क्या क्या किया है वो रामजी भाई जी को पता है। तो ये दो मना कीट भी हमने योग बल से उसको कंट्रोल किया है, उसको पवित्रता और शक्ति के किरणें देके कोई भी हमने वहां पे माना जैविक सेंद्रीय भी कीट को नहीं किया है। और अभी भी बंदर भी आके चार पत्ते आ गए थे अभी दूसरा प्रयोग में, तो वहां भी बंदरों को बताए ये परमात्मा शक्ति को दिखाने के लिए ये यहाँ पे योग चल रहा है, मेडिटेशन चल रहा है, तो इस प्लॉट को आपको आना नहीं है, परमात्मा का ऑर्डर है और परमात्मा के छत्र छाया में ये पौधे हैं। तो बंदर उस दिन से आए नहीं है, अभी वो सब पौधे फ्लोरा तक पहुंचे हैं। ओम शांति।
नहीं, आप सही बोलती हो, ये कमाल है आप, क्योंकि भोलापन है ना, जो इनोसेंट प्यूरिटी होती है ना, वो बहुत कमाल करती है। हमारे पास अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था हमारे हैदराबाद में, बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर है, साइलेंस रिट्रीट सेंटर। हाँ नहीं नहीं, आप योगी बनी, आप ही बंदरों को भगा सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम करें, हम चाहते हैं आप करो। हाँ ओके। नहीं, मैं अभी लेटेस्ट बता रही, गोवा से एक बहन आई थी भाई साहब, उसका पूरा खेती वो बोलते ना मोर, पूरा मोरों ने उसे प्रैक्टिकल, मैंने उसका सम्मान किया क्योंकि पूरे मोर खेती खा गए उसकी। तो उसकी जो बहन है ना वहां की, गोवा की, कौन सी बहन है भाई साहब, हाँ दर्शना बहन एक है, वो बहुत सालों से जुड़ी हुई है। तो दर्शना बहन ने उस बहन को बोला, बहन डिसअपॉइंट नहीं हो, आप रोज मोरों से बात करो और जितनी आपकी खेती है ना उसका कुछ पोर्शन उनको बताओ कि ये पोर्शन है जिसमें आप खा सकते हो और ये पोर्शन है जिसमें आप कुछ नहीं करना, ये आपका पोर्शन है। और मोर ऐसे ही करने लगे, क्योंकि देखो तीन चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, करेक्ट। तो हमारी आत्मा जो है ना पुरुष है, ये प्रकृति है, तो ये आत्मा पुरुष क्या हो गई है, वाइब्रेशन में थोड़ा डाउन हो गई है। अब जब ये परमात्मा के साथ कनेक्ट होती है, जिसको हम योग बोलते हैं कनेक्शन, तो इसमें भी पावर आ जाती है। तो वो जो पावर ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्रकृति, जानवर, प्रकृति सब सुनती है, एक्सेप्ट करती है जल्दी। हम ज्यादा ये चलाते ना, सबको सही बता सकते, जल्दी मना सकते, थोड़ा साइंटिस्ट को मनाना मुश्किल हो रहा ना, इसलिए तो हम आपको बिठा के बोल रहे कि आप बताओ हम आपको कैसे मनाएं। लेकिन हमने प्रैक्टिकल देखा भाई साहब ये, कि भाई वो लोग कहीं सुअर आ रहे हैं, उनको बोलते भाई जो साइड वाला है ना ये पोर्शन तुम्हारा है, अंदर घुसो मत, खराब नहीं करो, ये खाके, क्योंकि उनका भी अधिकार है। हमारे पास एक भाई आया था, प्रहलाद भाई, आपने शायद मिले भी हो, है प्रहलाद भाई, किधर है प्रहलाद भाई, उठो। इन्होंने जो अनुभव सुनाया मैं तो शॉक हो गई। इन्होंने एक जगह पे तोते हैं, तो वो बंदे ने खेती, जैसे आप बोले ना बंदर से परेशान, अमरूद का एक फार्म है जिसमें वो बंदे ने बोला भाई ये सारा खा जाते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो इसने बोला आपका तो नहीं चल रहा मुझे दो मैं चलाऊंगा। 35,000 कुछ में लिया प्रहलाद भाई ने, और फिर इतना योग किया और तोतों से बात करना शुरू किया और तोतों को बोला आपका भी अधिकार है, आप कहां जाओगे, आप भी खाओगे ना, आपके लिए भी है ये प्रकृति, हम सबके लिए है, तो आप खाओ, लेकिन जो अमरूद खाते हो ना वो ही खाओ। हर अमरूद को चोंच मारोगे तो मुश्किल है ना, तो तुम भी सुखी मैं भी सुखी, ये है ब्रह्मा कुमारी का कॉन्सेप्ट।
दीदी ये चीज जो लोग अनुभव नहीं किए ना अभी तक, उनके लिए समझना मतलब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मेरा मैं अनुभव शेयर करूंगा, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया, उसके पहले मेरा परिचय नहीं था खुद का, मुझे, मैं अपने आप को विनोद लाहोटी, मैं जीओएलएफ का चेयरमैन ब्ला 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 समझ के चलता था, राइट। तो जैसे मेरा पहली बार यहाँ पे राजयोग हुआ, अनुभव हुआ, मुझे उसके बाद में जो फील हुआ कि मेरा, मैं उसके पहले फ्लाइट मोड पे जी रहा था। फ्लाइट मोड होता ना मोबाइल में, फ्लाइट मोड में भी मोबाइल यूज कर सकते हैं हम, गेम्स खेल सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका कार्य है कॉलिंग डेटा वो नहीं होता है। तो वैसे मैं जी रहा था, जिस टाइम पे यहाँ पे कोर्स किया मुझे फील हुआ कि मेरा फ्लाइट मोड से निकल के मैं नेटवर्क से कनेक्ट हो, जैसे दीदी ने बोला आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट होना, वहीं से एनर्जी शुरू होती है। उस टाइम के बाद में आज तक मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो नहीं हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हर महीना अलग अलग कंट्रीज में, विश्व के अलग अलग जगह, ऐसे जगह जहां बोलते जाना नहीं चाहिए, मेरा वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस हुआ मैं स्पीचेस देने के लिए जाता हूं कई जगह पे, ऐसा अनुभव होता है कि लोग वहां के लोकल वाले लोग डरते हैं कि एक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अरे यहाँ तो बढ़िया एकदम, कोई ना कोई मेरे साथ में है जो चला रहा है। तो ये अनुभव तभी होगा जब हम अपने आप को फ्लाइट मोड से निकाल के नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। और यहाँ पे आप लोग आए हैं, ये तीन दिन में आपका, हम सबको फ्लाइट मोड से निकालने की विद्या ही सिखाई जाएगी। हम जब कनेक्ट हो जाएंगे फिर हम खुद अनुभव करेंगे, ये जो सब बोल रहे हैं ना उस चीज पे हमको हंसी नहीं आएगी,
हम अपनी अपने आप ये चीज फील करने लगेंगे, आप खुद अयोध्या में बंदरों से बात करेंगे, भगाएंगे, पक्का है।
बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि जैसे बताया ना, शुगर खाके देखो, शुगर खाना पड़ेगा, आपका अनुभव रहेगा, और वो जो अनुभव की पावर है ना भाई साहब, वो बहुत बड़ी है। अभी क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सेशन है 6 बजे, जान की हमारी दादी थे जो 104 साल जिए, क्या पावर थी उनमें, बचपन से जिनके शरीर में इतनी बीमारियां थी, लेकिन फिर भी जो मनोबल है, विल पावर है, आत्मिक बल है, उससे 104 साल जी सकते हैं, इस प्रकृति को चला सकते हैं, योग बल से पूरे वर्ल्ड में दादी जी ने भ्रमण किया, पूरे वर्ल्ड में एक टॉप मोस्ट बिजनेस बिलियनियर्स भी नहीं करता हुआ, इतना ट्रेवल किया उन्होंने, पूरे देश विदेश में एक 4 स्टैंडर्ड पड़ी हुई, पूरे विदेशों में पूरे सेंटर्स उन्होंने खोले। तो ऐसी हमारी दादी थी जिनके नाम पे हमने जानकी पार्क, उसमें आपको शांति की अनुभूति का भी बहुत सुंदर सेशन है, तो मैं हम नहीं चाहेंगे कि वो इतनी सुंदर चीज आप मिस करो। तो हम वाइंडिंग के तरफ जाएंगे, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़ के सहयोग दे सकते, वो हाथ उठाएंगे, जो बाबा के रेगुलर बच्चे हैं वो नहीं, जो अभी नए हमारे मेहमान आए हैं, क्योंकि जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए उनका सहयोग तो हमेशा हमारे साथ है, जो पहली बार आए हैं और ये सब सुनने के बाद उनको लग रहा है कि हम इस तरह से जुड़ना चाहेंगे, प्लीज दादा आइए, और प्लीज 2 मिनट का टाइम लेना, क्योंकि आपका ही और हमारे भाई साहब हैं जिनसे हम बहुत सुंदर बातें, बहुत पावरफुल बातें सुन सकते हैं, तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा। हाँ जी बैठिए, आगे आप अपना नाम परिचय कहाँ से आए बता के।
ओम चंदी, मैं वसंत बिनोड़े, आई एम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड पोस्टेड इन पुणे महाराष्ट्र इन आदर्श गांव योजना। आदर्श गांव योजना 1992 में अन्ना हजारे जी ने शुरू कर दिया महाराष्ट्र में, और ये समृद्ध गांव का सपना उन्होंने उस टाइम में महाराष्ट्र में, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाते हैं, हम लोग 3 साल के लिए हर डिस्ट्रिक्ट से कम मिनिमम 5 गांव सिलेक्ट करके उसको फंडिंग करते हैं, जो जो ग्राफिकल एरिया है गांव का, गांव के हिसाब से 22,000 पर हेक्टर के नाम से हम लोग DPR बना के 5 एक्टिविटी वहां अरेंज कर दिए गांव में, वहां ऑटोसेट डेवलपमेंट, ईपे एक्टिविटी, गांव के सम ग्राम विकास के एक्टिविटी, और जो SHG ग्रुप है लेडीज और जेंट्स के, उसको हम लोग फंडिंग करके स्वरोजगार निर्मित करते हैं, उसमें हम लोग कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप के ट्रायल भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बनाते हैं, उसमें हम लोग औद्योगिक खेती का जो हमने सीखा यहाँ वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वहाँ। उस हमारे यहाँ अभी तक हमने 371 विलेज इंडिपेंडेंट कर दिए है आदर्श गांव योजना में, और अभी 46 विलेजेस वर्किंग में है अभी महाराष्ट्र स्टेट में, और 3 साल में हम लोग नियर अबाउट 3-4 करोड़ का फाइनेंस उनको करते हर गाँव में। तो ये निश्चित हम लोग ये जो सीखे हैं इधर वो हमारे महाराष्ट्र में आदर्श गांव योजना जो अभी
बहुत सुंदर, थैंक यू,
पद्मश्री पोपटराव पवार जी उसके कार्याध्यक्ष है, अन्ना आदर जी रनिंग, ही इज नियर अबाउट 91 ईयर ओल्ड नाउ, ही इज नॉट रनिंग हियर एंड देयर, ही इज जस्ट आई नो।
आपकी दीदी यहाँ ही, आप लकी हैं क्योंकि पुना से हैं, और पुना दीदी आपको 1 मिनट में पहचान गई, तो आप दीदी से कॉन्टेक्ट नंबर भी लेना, और फिर आपको बिल्कुल दीदी सहयोग देंगी और वहाँ पे, हाँ जी वही बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला राम खर्चे भाई ये दीदी हैं, तो आप बहुत सुंदर, देखो ये तो ये सेवा शुरू ही हो गया, तो ताली जोर से बजाएंगे हमारे भाई के लिए।
धन्यवाद, थैंक यू।
ओम शांति, मैं जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और पहली बार आया हूँ, ये आने के बाद जो मुझे लगा, क्योंकि हमारे आसपास में जनपद गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर लघु कृषक हैं, और खेती से इस तरह की स्थिति बनी है कि प्लान कर रहे हैं लोग, जो नौजवान जुड़ना नहीं चाहते। बाकी यहाँ आने के बाद मैं भी खुद भी इस पर बहुत विचार करता और मानसिक तौर से पीड़ित रहता, बाकी आने के बाद जो मुझे लगा तो ऐसा लगा कि हाँ हम निश्चित रूप से इससे उभर जाएंगे, और ऐसा लगा कि वास्तव में जो हमारा समाज इतना प्रताड़ित है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो उसी से अपना गुजारा बसर करने कर अपने आजीविका चला सकते हैं, और वो क्योंकि इतना छोटा और संकुचित हो गया है कि उससे अपनी आजीविका चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बाकी जिस प्रकार मुझे कॉन्फिडेंस हुआ है, जबकि मैं पहले टूटा हुआ, और यहाँ आने के बाद योगी खेती और जो कृषि के विषय में आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे ऐसा लगता है कि हम निश्चित रूप से सफल होंगे और हमारा किसान भी सफल होगा। और ये शक्ति हमारे सभी किसानों के बीच में बाबा का आशीर्वाद, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा और योगी खेती के प्रति सब में जागरूकता
होगी। इंडिया के जिस कॉन्टेक्ट से आए हैं ना, सुनीता बहन मेरठ की हैं यहाँ पे?
जी जी, उन्हीं के माध्यम से।
अच्छा विमला, तो आप उनसे जुड़ के जरूर। बिल्कुल
ठीक है,
थैंक यू सो मच।
ओम शांति।
ओम शांति। टाइम बहुत
दो
मिनट
थैंक यू सिर्फ दो मिनट। थैंक यू सो मच।
मैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड एग्रोनॉमिस्ट हूँ और मैंने मक्का संशोधन केंद्र पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गोधरा में यौगिक खेती पे एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें पूरी टीम यहाँ शांतिवन में से भी आई थी। तो इसका जो रिजल्ट है वो मैं ये बताता हूँ कि सारे कैरेक्टर, सब जो डेटा मैंने कलेक्ट किया, तो उसमें जो राजयोग कंपोनेंट्स का जो है वो सभी में आगे बढ़ा है। और वो रिजल्ट मैंने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी पेश किए हैं और रिपोर्ट में भी आज मौजूद है। ये एक्सपेरिमेंट सेम जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी गुजरात में लिए गए और सभी जगह जो है राजयोग कंपोनेंट्स जो है वो सबसे आगे निकले। तो यही रिजल्ट है हमारा।
थैंक यू केएच पटेल भाई।
आज मैं पूरा प्रेजेंटेशन लेके आया हूं लेकिन टाइम नहीं है।
हां जी, बस टाइम नहीं है,
बाकी मैं पूरा और
एक घंटा बैठना चाहिए हम लोग,
समय का कमी है इसीलिए मैं फोटोग्राफ नहीं दिखा सकता हूं। और
नहीं, हमको आपके बात पे विश्वास है।
और तीसरी बात है कि मक्का संशोधन में मैंने 30 साल तक काम किया और हमारे गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, राजस्थान के लिए और मध्य प्रदेश के लिए हमने 3-4 वैरायटी निकाली है। उसके शॉर्ट में 1-2 मिनट में बता देता हूँ। हमारी जो GYMH5 है वो 7200 माना 7.2 टन खरीफ में प्रोडक्शन देती है, माना एक बीघे में से आपको 100 मन से भी ज्यादा उत्पादन मिलता है। दूसरा, हमने अमेरिकन स्वीटकॉर्न, जो ये स्वीटकॉर्न जो बोलते हैं ना, उसमें मधुरम वेराइटी हमने रिलीज किया है। वो मधुरम का 1 लाख कॉब 85 डेज में आपको 1 लाख ग्रीन कॉब मिलते हैं। और ये नॉर्मल जो हमारा देशी मक्का है उससे उसमें शुगर का जो परसेंट नेचुरल शुगर है वो 3 गुनी ज्यादा है। अब डायबिटीज वाले जो है ना वो भी खा सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरी वेराइटी हमने पॉपकॉर्न की निकाली है, महाश्वेता। इस सभी का सीड हमको हमारे गुजरात में मक्का संशोधन केंद्र से आपको मिल सकता है, बराबर। तो ये आपकी जानकारी के लिए है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके,
थैंक यू सो मच। जस्ट टेक 1 मिनट प्लीज, क्योंकि अभी हमारे दोनों बड़े।
ओम शांति। मेरे शरीर का नाम गोपाल धाकर, मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ में कृषि अधिकारी हूँ। अभी पूरे देश भर में एक स्कीम चली, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। इसमें पूरे राजस्थान में 434 नए क्लस्टर्स खोले जाएंगे। 50-50 हेक्टर के क्लस्टर्स होंगे और लगभग 125 फार्मर प्रति क्लस्टर में होंगे। इसमें बायो रिसोर्स से जुड़े जैसे 10% हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, प्राकृतिक बीज संरक्षण हो गया इत्यादि पर विशेष ट्रेनिंग और अनुदान का प्रावधान है। और प्रत्येक क्लस्टर में 2 राजीविका से जो कृषि सखी जो खुद के खेत में भी प्राकृतिक खेती का डेमोन्स्ट्रेशन लगाएगी और 5000 मासिक उनको अनुदान मिलेगा और उनको अपॉइंट रखेंगे। क्योंकि प्राकृतिक खेती और यौगिक खेती का कंसेप्ट काफी मिलता जुलता है, तो अगर हम इसको यौगिक खेती को साथ में ले लें तो देश भर में एक बड़े स्केल पर अपन यौगिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर कंसर्न। अभी मैं ये चाहूंगी कि जो पहली बार आए वो एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज। जो पहली बार आए हैं बाबा के घर में, पहली बार आए हैं, हाँ बस जो पहली बार आए हैं, आप सिर्फ एक काम करेंगे कि आप अपना नाम और कहाँ से जुड़े हुए हैं, खड़े ही रहेंगे, बैठेंगे नहीं, जो बोलेगा वो बैठता जाएगा। हाँ जी, अभी कोई बोलेगा नहीं, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ अपना परिचय देंगे ताकि हमारे जो विंग के वाइस चेयरपर्सन है हमारे राजू भाई, आदरणीय राजू भाई जी, जो बचपन से इसमें जुड़े हुए हैं और हम जो रोज डिस्कोर्स सुनते हैं जिसको हम कहते हैं मुरली, मधुबन में मुरलिया बाजे रे, तो हम इसको मधुबन बोलते हैं, जहां मधु भी है, मधुरता भी है और त्याग और तपस्या भी है। तो ऐसे हमारे राजू भाई जो हमको इतना रिफ्रेश करते पूरे वर्ल्ड के सेंटर्स को, तो ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में है। तो उनको आपका परिचय होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक माइक देंगे, माइक पास ऑन हो सकता है भाई साहब?
नहीं
आ सकता, तो आप आगे आएंगे अपना अपना परिचय देके, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और किस संस्था से या किस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं?
ओम शांति,
तीन वर्ड स्टेटमेंट।
ओम शांति, मेरा नाम हितेश कालरा है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ। राइट नाउ नरवाना जींद में मैं डायरेक्टर हूँ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर में, और बीके सीमा दीदी नरवाना सेंटर की तरफ से और बाबा जी के आशीर्वाद से मेरे को फर्स्ट टाइम आने का मौका मिला। मैं पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मन में विचार आ रहा था, मैं गुजारिश भी करूंगा कि हरियाणा में जैसे किसान फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है, एकमात्र ही सेंटर है ये हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक चलाता है, तो अब आगे जितनी भी हरियाणा में सेंटर्स हैं ब्रह्मा कुमारीज के, हम साथ मिलके काम करेंगे और MOU साइन भी करने की कोशिश करेंगे और फार्मर्स को हरियाणा में यौगिक खेती के लिए पूरा उनको प्रेरित करेंगे और पूरा तन मन और धन से हम ब्रह्मा कुमारी के लिए काम करेंगे। थैंक यू,
बहुत दिल से ताली बजाएंगे।
मैं डॉक्टर AK मिश्रा, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अयोध्या में हूँ इस समय, और मैं बद्री भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके साथ मैं 95 से मेरा परिचय है, लेकिन 96 के बाद से मैं 20 साल वर्ल्ड बैंक में चला गया, तो बीच में कुछ कनेक्शन नहीं थे। फिर लौटने के बाद विभाग में आपसे संपर्क में मैं रहा और लगातार संपर्क में रहता हूँ, तो उन्होंने ही प्रेरणा दी मुझे यहाँ आने के लिए,
तो
मैं बहुत बहुत उनका आभारी भी हूँ और हमारे अच्छे मित्रों में भी हैं। और अध्यात्म से जुड़ा तो हूँ, स्पिरिचुअलिटी से तो जब मैं एमटेक कर तब से जुड़ा हुआ हूँ और लंबे अनुभव है, लेकिन मैं दो तीन बातें और मैं आपसे अपेक्षा है कि वाइब्रेशंस के फर्क तो सब जगह हैं, और जैसे जल में वाइब्रेशंस की भी बात आई है तो कैंगन वाटर की आपने बात सुना होगा कि 3-3.5 लाख रुपए में मशीन बेच रहे हैं वो सिल्वर वाली मशीन कैंगन वाटर में, तो क्या हम राजयोग के उससे उस जो हम जल पी रहे हैं, क्योंकि 98% वाटर हमारे बॉडी में है।
आपने डॉक्टर इमोटो को
सुना है?
आई हैव, तो आपको मालूम है कि उसने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं?
आई हैव हर्ड अबाउट द कैंगन वाटर।
हमारे काफी भाई बहनों ने एक्सपेरिमेंट किया है।
अच्छा, वो नहीं देखा, तो कैंगन वाटर का देखा था मैं, बट मेरा जो सवाल ये है
वो पर्सनल पूछे तो, क्योंकि बहुत जने खड़े हैं भाई साहब, 6 बजे तक पूरा करना है
तो नहीं सर।
तो जिसको भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल मिल सकते हैं हमारे बड़ों से, हमसे, किसी से भी, तो आप उसको सॉल्यूशन।
अखिलेश कुमार सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ब्यूरो,
परिचय देंगे,
उत्तर प्रदेश लखनऊ से मैं हूँ। और जब आप कृषि भवन आए थे, बद्री विशाल तिवारी जी ने कार्यक्रम वहाँ कराया था और आप कृषि भवन में आए थे, तो उस समय कार्यक्रम में हम लोग थे, तो उस दिन इच्छा जागृत हुई कि अब यहाँ चलना चाहिए, तो शायद ऊपर वाले ने सुन लिया इसलिए आना हुआ। थैंक यू।
जो बोलते जा रहे हैं वो बैठ सकते हैं प्लीज।
मेरा
और
नाम
थक रहे हैं तो भी बैठ सकते हैं।
मेरा नाम रामबच्चन है, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर बस्ती मंडल में हूँ उत्तर प्रदेश में। और बद्री भाई बहुत दिनों से कहते थे एक बार चलिए चलिए, लेकिन इस बार ऐसा मौका मिला कि मैंने कहा नॉमिनेट करा दीजिए, हम लोग यहाँ आ गए, शायद बाबा के ही।
वेलकम,
बहुत बहुत धन्यवाद,
थैंक यू। आगे थोड़ा आगे आना पड़ेगा सभी को।
मेरा नाम राजेश कुमार यादव, झारखंड से हूँ। हमारा स्टेट ट्राइबल स्टेट है, लेकिन हमारा एक ऐसा जिला साहिबगंज है जहाँ पूज्य बीके दीदी के द्वारा सेंटर चलता है, और उनके संपर्क में आने के बाद ये बहुत ही आकर्षक टॉपिक आपने चुना है, यौगिक कृषि। और एक दो पंक्ति में, किसान भी हूँ और किसान के नाते ही मैं काम करता हूँ। मेरी अपनी एक करुणाकर फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को लेकर मैं किसानों के बीच सालों भर सक्रिय रहता हूँ। इस नाते मैं आया कि मेरा इसमें कुछ योगदान हो सके। मैं दो एग्जाम्पल छोटी सी बताता हूँ कि पशु पक्षियों की जो बात हुई, एक हमारे यहाँ मैं दीरा में काम कर रहा था, बहुत मोटा भैंसा था और वो
सभी थोड़े शांति बनाए रखेंगे,
सबकी
अच्छा
फसलों को बर्बाद करता था, लेकिन मैंने उनको बताया कि आप एक दिन उनको प्रणाम कर लो, उस दिन से बर्बाद नहीं करेंगे। प्रणाम करने के बाद वो मान गया।
सुनिए पीछे वाले भाई साहब।
और दूसरी बात थी कि हमारे यहाँ सियार सियार हम लोग बोलते हैं जायकल, तो वो मक्का की खेती में वो इतने तेज होते हैं कि ये दोनों कंधों से ऐसे तोड़ते हैं वो मक्का को, खड़ी मक्का को गिरा देते थे। और किसान बहुत परेशान, बोला भैया हमारे यहाँ तो सारा तो ठीक रहा लेकिन सियार बहुत बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर उसको मैंने कहा कि एक दिन उसको बिल्कुल दंडवत हो जाओ। दंडवत हुआ, प्रणाम किया और उसके बाद सियार जो है एक भी फसल बर्बाद नहीं किए।
देखो कितना अपने अंदर की पॉजिटिविटी काम करती है। अभी आप थोड़ा सा हमारा रिक्वेस्ट मानेंगे, मैं जानती हूँ कि आपके अंदर बहुत भावनाएं हैं लेकिन समय हमको थोड़ा,
बिल्कुल इतना ही कहके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।
तो फिर सिर्फ अपना परिचय और कहाँ से, ताकि हमारे भाई साहब को आपका परिचय मिल जाए इसलिए।
जी साहिबगंज झारखंड, हम लोग हमारे साथ हैं, साथ में ही हैं।
सियाराम यादव मैं,
जिनका हो गया वो बैठ जाइए प्लीज।
किसान हूँ।
हाँ जी बैठ जाइए।
इसी के साथ मैंने यहाँ पर आया है अनुभव।
बहुत अच्छा, वेलकम है आपको बाबा के घर में। नेक्स्ट नेक्स्ट, चार मिनट में सबका परिचय होना चाहिए।
डॉक्टर हरिहर सिंह, यूपी से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर हूँ और अभी इसी बार अप्रैल में सेवानिवृत्त हुआ हूँ एग्रीकल्चर, और प्रयागराज में सेवा कांड से जुड़ा हुआ हूँ।
जो बिल्कुल पहली बार आए हैं।
ओम शांति। जैसे दीदी ने बताया खाली परिचय दें, बहुत टाइम चाहिएगा, तो अपने एक्सपीरियंस तो सभी के पास है। मेरा नाम ब्रजपाल सिंह चौहान है, मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और चूंकि दीदी से मिला था उन सब में बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा सेमिनार है, मैंने कहा हम चलेंगे। मैं एज जनरल मैनेजर यूपी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन से मैं रिटायर हुआ हूँ 2015 में। ओम शांति।
ओम
शांति। सभी को नमस्कार। ओम शांति। एक्चुअली मैं पहली बार इस संस्था में आया हूँ तो बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है संस्था के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर सुनयन साहा, वर्तमान में मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR, आवाज आ रहा है, ICAR में मतलब वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद में कृषि मौसम विज्ञान डिसिप्लिन है मेरा, उसमें मैं कार्यरत हूँ। और ICAR के अंडर में बहुत सारे 113 इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आलू के ऊपर अनुसंधान करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, उसका हेडक्वार्टर शिमला में है और उसका एक रीजनल सेंटर जालंधर में है। तो मैं जालंधर सेंटर में फिलहाल पोस्टेड हूँ और क्योंकि समय कम है मैं कुछ बता तो सकता था इसे, लेकिन ये जो है कि कल जैसे आया और रजिस्ट्रेशन किट मिला और जो जितने भी मतलब ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितना भी मतलब ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह में डेमोन्स्ट्रेशन और एक्टिविटीज हुआ है तो काफ़ी प्रभावित करने वाला है सब चीज़, तो आई एम इंस्पायर्ड, तो अच्छा लगा।
सो नाइस ऑफ यू।
मैं चंद्रशेखर नखाते परभनी से आया हूँ, वसंत रौनक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ का मैं रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ और गए पिछले 25 साल से मैं विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल का मैं शिवाजी लॉ कॉलेज का अध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल का इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे हमने पीस लैब स्थापन की है, वहाँ पे सुनंदा दीदी ने विजिट दी है।
सो नाइस, सो गुड। ताली बजाओ, ताली जो बैठे हैं ताली बजाओ।
ओम शांति। केवल 30 सेकंड बोलूंगा, मेरठ से आया हूँ, तस्वीर सिंह चपराना मेरा नाम है। 1857 के क्रांति नायक बाबा शहीद धन सिंह कोतवाल जी का परपोत्र, छठी पीढ़ी का हूँ और वहां पर उन्हीं के नाम से जो शोध संस्थान बना हुआ है उसका चेयरमैन हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में पूरा धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान का नेटवर्क है जिसमें 10 से 11 हजार बहनें स्वयं सहायता समूह के रूप में जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में वहां पर जो हमारी बहन सुनीता जी हैं वो हमारे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आई थी और उन्होंने हमको प्रभावित किया, कई सारे कार्यक्रम हुए। पिछले अप्रैल के 15 के आसपास उन्होंने कहा है कि एक कार्यक्रम हम आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं, वो कार्यक्रम रहेगा वृद्धों के सम्मान का और नशा मुक्ति का। तो हमने कहा कितने बच्चों के बीच में जाना है, बोला 10 से 11 हजार, तो आपको शायद सूचना आ गई होगी 11 हजार बच्चों का कार्यक्रम हमारे द्वारा उनके साथ मिलकर किया है और अभी
ताली बजाएंगे
बहुत 11 आपके पास सूचना आ गई होगी। और अभी जो है फिर ये बात बनी कि हमारे किसान आदरणीय वो सब हमारे बीच में साथ आए हैं 3 आदमी और बाद में और बहुत सारी बातें मुझे करनी थी लेकिन चूंकि समय कम है मैं जिज्ञासा मेरे मन में है आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं।
हाँ,
अभी संतुष्ट नहीं हूँ, आगे बात
करूंगा। बैठ सकते हैं, बिल्कुल 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 आप मिल सकते हैं पर्सनली हमारे बड़ों से, कितने भी सवाल जवाब कर सकते हैं।
नमस्ते, ओम शांति। मैं शेखर सुरगावकर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ।
मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ और विजय सुतार के माध्यम से यहाँ पे आए हूँ.
थैंक यू, दिस इज सो गुड ऑफ यू. लाइक हिम प्लीज. हाँ, इनको फॉलो कीजिए और इनके लिए जोर से ताली बजाए क्योंकि इन्होंने बरोबर आज्ञा मानी.
ओम शांति. मैं दिलीप कांबले, महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ. मैं भी एग्रीकल्चर ऑफिसर 30 साल से हूँ. और विजय गुरु इनके साथ से भी आया.
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएंगे.
ओम शांति. मेरा नाम भरत अजर है. मैं पालघर जिला महाराष्ट्र से हूँ. मैं सरपंच हूँ और किसान भी हूँ.
वेरी नाइस सर, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, गांव को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने.
ओम शांति. मैं डॉक्टर सूरज मलजाट और मैं अभी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर टोंक राजस्थान से हूँ. हमारे भाई जो चित्तौड़ से आए थे कृषि अधिकारी, जो प्राकृतिक खेती हमारी जो चल रही है उसमें हम अनुदान दे रहे हैं, वो स्कीम चल रही है. हम भी ये चाहते हैं मैं प्राकृतिक खेती से योगी खेती को जोड़ के इसको आगे
बढ़ाएं. बहुत सुंदर, ताली बजाएंगे प्लीज.
ओम शांति. मैं नमिता राउत, मैं एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बागलकोट से हूँ.
वेरी नाइस सिस्टर, सो काइंड ऑफ यू.
ओम शांति. मैं अरुण कुमार कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ्रूट साइंस, धारवाड़ में काम करता हूँ. वी आर अफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज बागलकोट.
आई नो व्हेन यू गिव. बहुत सुंदर, आप युगल मुहूर्त है, हमको बहुत खुशी होती है युगलों को देख के, तो आप दोनों मिलके कमाल करना है. जी जी बिल्कुल.
ओम शांति. मेरा नाम पद्मावती हंसदा है. मैं ब्लॉक उद्यान अधिकारी हूँ और संबलपुर उड़ीसा से मैं आई हूँ.
थैंक्स ऑफ यू सिस्टर, सो काइंड ऑफ यू, शॉर्ट एंड स्वीट.
मेरा नाम गजानंद भुपचे है. मैं MP सिवनी से हूँ. मेरा व्यवसाय कृषि है और मेरे दादाजी के समय से कृषि का जो कार्य शुरू करते थे उस समय से सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है.
यू आर राइट 100%.
ओम शांति,
गुड न्यूज. थैंक यू ब्रदर.
ओम शांति.
ओम शांति.
मैं बिदर से हूँ बहन जी, कर्नाटका. और मैं एक अदरक का किसान हूँ, जिंजर फार्मिंग करता हूँ. मैं 12 साल से अदरक की खेती कर रहा हूँ और आज तक मैं बाबा के ध्यान में खेती करता हूँ. और मेरे खेत में आज तक मर्रोग बोल के आता है, हमारे एरिया में कभी नहीं आया. और मेरा 200 क्विंटल तक का एवरेज आया सर. हमेशा बाबा का झंडा खेत में लहराता है और सुबह शाम गीत चलते रहते हैं.
सो नाइस, सो नाइस.
सबसे बढ़िया खेती हमारी हो रही है बाबा.
ताली बजाएंगे जोर से. बहुत अच्छा, क्या नाम बोला?
संजय चौहान.
संजय.
ओम शांति.
बीदर.
हम भी बीदर से आए. हमारा
हाँ जी
8 लोग आए.
हाँ जी, देखा हमने.
बचपने से हम ये खेती करते हैं, हमको आनंद मिलता है बाबा के आशीर्वाद.
थैंक यू सो मच. बीदर की दीदी को ओम शांति बोलना हमारा.
ओम शांति दीदी. मैं प्रमोद सावंत, आई एम वर्किंग एज डेप्टी डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स इन. मैं पुणे से हूँ. अभी इधर कुछ ज्ञान मिला है तो हम अप्लाई करने का प्रयास.
पुणे में प्रोग्राम है उसमें जरूर जाइए.
ओम शांति. मैं डॉक्टर चंद्रकांत थलगे, नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ. एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वहाँ से अभी रिटायर हो गया हूँ. और मनीष भाई जो है हमारे दरियापुर के, तो उन्होंने मुझे लाया था. उनके लिए और आपके लिए धन्यवाद.
थैंक यू. थैंक्स टू यू आल्सो फॉर कमिंग.
नमस्कार, मैं कृति सुंदर पात्रा हूँ. मैं उड़ीसा से आया हूँ. मैं लास्ट 9 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूँ. मैं प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ. अभी मैं पर्सनल कैपेसिटी में आया हूँ. मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ. मैं देखूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे इसमें आगे आ सकता है.
सो नाइस सर,
ऑफिशियली वी विल कम.
बहुत जोर से ताली. क्या भाई सर, नाम क्या बता?
कृति सुंदर पात्रा, AGM रैंक में हूँ, कॉर्पोरेट ऑफिस में.
पात्रा, सो काइंड ऑफ यू.
मैं डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे, छत्तीसगढ़ राज्य का सेवानिवृत्त संचालक कृषि. और मैं 85 साल का हूं और कई सालों से मैं सुनता आया प्रभा कुमारी को. अब जुड़ने का मौका मिला है. हम मेरी राठी बहन जिलाई हैं. मैं चाहता हूं कि जैसे हम योग को जोड़ते हैं, इसी तरह यदि हम रामायण रामचरित मानस को जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा. जैसे कहते हैं, कृषि निवारे चतुर किसाना, जिम बुद्ध तज मोह बनाना. ये मोह मत के तजने वाला पर भी थोड़ा सा अनुसंधान होना चाहिए, ऐसा मेरी भावना है. डॉक्टर मिश्रा साहब ने और डॉक्टर हमारे बद्री प्रसाद जी ने, दोनों ने जो भाषण दिया उससे बहुत प्रभावित हुआ. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत,
जय भारत.
ओम शांति.
ओम शांति. देखो 85 में कितना एनर्जी है.
मैं
ताली बजानी चाहिए.
सुधीर पांडे, कृषि विभाग से सेवानिवृत्त और हमारे अंकल जी हैं, उन्हीं के साथ मैं आया हूँ.
आपकी उम्र कितनी है?
मेरी उम्र है 68। धन्यवाद।
बहुत अच्छा भाई, इतनी एज में इतना एक्टिव है तो बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा समाप्तन की तरफ चाहेंगे, क्लोजिंग की तरफ। तो हम पहले हमारे आदरणीय राजू भाई जी से कुछ प्रेरणाएं लेंगे, क्योंकि वो सारा विश्व भ्रमण करते हैं, बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव सोल जिसको हम कहते हैं। तो आप सब शांत में चले जाएंगे। थोड़ा सा पांडे जी, सुनीता पांडे जी भाई साहब बोलने वाले हैं, तो एक दो मिनट बहुत अच्छी प्रेरणाएं हम भाई साहब से लेंगे। राजू भाई जी,
ओम शांति। आप सभी के बहुत सुंदर विचार सुने, कई प्रकार की साइंस की बातें, साइलेंस और साइंस दोनों के भेद को समझने में कभी कभी थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन साइंस भी निकली तो साइलेंस से ही है। अगर मन एकाग्र नहीं है, शांत नहीं है, तो कोई भी रिसर्च नहीं हो सकती। इसलिए साइलेंस पावर क्या है, इस वातावरण में उसका आप अनुभव कर रहे हैं और उसको प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल खेती पर नहीं, हम कहीं पर भी किसी भी विधि में, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे मानसिक हैं, चाहे संबंधों में हैं, हम इस साइलेंस की शक्तियों का प्रयोग करते हैं और कराते हैं। तो आप सब यहाँ के अनुभव लेके जाएंगे, और मेरी एक शुभ आशा है कि जिस सेवा केंद्र के कनेक्शन से आप आए हैं, वहाँ पर इसका 7 डेज का कोर्स होता है, वो केवल 1 घंटे रोज होता है। आप वहाँ की बहनों के पास जाएं और 7 दिन का कोर्स करें। एक सुप्रेरणा आ रही है कि हमने किसानों के लिए अपने शांतिवन में तपोवन मॉडल बनाया है, और उस तपोवन मॉडल में पहले उत्तर प्रदेश के किसानों से उसकी शुरुआत हुई, बद्री विशाल भाई ने ग्रुप्स भेजे, उसके बाद उड़ीसा से बहुत सारे ग्रुप्स आए, राजस्थान से आए, तेलंगाना से आए, और हरियाणा से भी कुछ ग्रुप्स आए, लेकिन वो पर्सनल आए, गवर्नमेंट की तरफ से 4 स्टेट के आए। आप सब जो भी यहाँ आए हैं, क्या एक एक दो दो ग्रुप 50-60 किसानों का तैयार करके उनको आने जाने का खर्चा और कुछ उनके लिए जो खर्च होता है, थोड़ा सा उन्हें गवर्नमेंट के जो खर्चे उससे दिला के उनको इस स्थान पर अगर आप भेजेंगे, तो कोई भी समय हमारे पास यहाँ कोई से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास उनके लिए 60-70 किसानों के रहने की व्यवस्था अलग से की हुई है, भोजन की व्यवस्था है, सब साधन है। इसलिए आप सब जब भी यहाँ भेजना चाहें, तो हमारे सुमंत भाई हैं, चंद्रेश भाई हैं, जो इस कोऑर्डिनेटर हैं, जो यहाँ संभाल रहे हैं सब कुछ, आप सब इनको पत्र व्यवहार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और सेवा केंद्रों के कनेक्शन से अगर आप आएंगे तो बहनें आपको यहाँ पर स्वतः ले आएंगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी आप सब यहाँ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आप भी अपने क्षेत्र में कई किसानों से जुड़े हुए हैं, तो उन किसानों को तैयार करके इस भूमि तक अगर आप लाएंगे, तो प्राकृतिक खेती तो दुनिया में सरकार कराने का बहुत प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं केवल खेती न करें, लेकिन किसान खुद चरित्रवान बने, उनका चिंतन चेंज हो, उनके विचार शुद्ध और पवित्र हों। अगर किसान चेंज हो गया तो ये प्रकृति और ये धरती को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मूल हमारा उद्देश्य है उन्हें राजयोग का अच्छा अभ्यास कराया जाए, वो खुद को पहचाने, अपने विचारों को पहचाने, क्योंकि जो वाइब्रेशन बनते हैं वो हमारे वृत्तियों से बनते हैं, और जो वृत्तियां हैं वो हमारे संकल्पों से बनती हैं, जो हम चिंतन करते सोचते हैं, और जो चीज़ बार बार सोची जाती है, वृत्ताकार में सोची जाती है, वही वृत्ति बन जाती है। और वो वृत्ति जो अंदर चली जाती वो हमारे वाइब्रेशंस बनते हैं। इसलिए संकल्पों से वृत्तियां, वृत्तियों से वाइब्रेशन बनते, और जब हम कोई कर्म प्रैक्टिकल करते हैं तो उन कर्मों के आधार से हमारे संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार ऐसे हो जाते हैं तो उनको चेंज करने में बड़ी मेहनत लगती है। अब आज के किसानों के संस्कार ऐसे बन गए हैं, उनको चेंज करना उसके लिए उनके संकल्पों को, वृत्तियों को पहले चेंज करना, और वो चेंज करने का बड़ा अच्छा कार्य यहाँ हमारे तपोवन में, शांति वन में नीचे चल रहा है। मॉडल देख करके किसान समझ जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो 5 लेयर खेती का एक मॉडल बनाया है, हमारे प्रहलाद भाई उसके निमित्त बने, और उसको देखने के बाद कई स्थानों पर हमारी सुनीता बहन ने अपने स्थान पर मॉडल बनाया, बहुत सारे भारत के अलग अलग स्थानों पर मॉडल बने हैं। आप सब उसको देख के जाना, यहाँ से जाते तपोवन विजिट करना, और देखने के बाद अपने किसानों को यहाँ भेजना, ऐसी हमारी शुभ भावना है। ओम शांति।
हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि बद्री विशाल भाई जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की है, तो
शुरुआत
वो अनुभव
उत्तर प्रदेश से हुई है, और उत्तर प्रदेश के 15 अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे, उसमें डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी हमारे साथ में आए थे, और उन्होंने जब देखा कि ये काम जो हो रहा है यहाँ पे, अगर किसान देखेंगे तो सीखेंगे, और किसान जब श्रेष्ठ बनेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, तो उन्होंने 2 योजनाएं चलती हैं जो अभी एक भाई ने, किसी ने जिक्र किया था। एक तो पूरे भारत में प्राकृतिक खेती की योजना चल रही है, उसमें किसानों के प्रशिक्षण की, नोट कर लीजिएगा आप लोग, किसानों के प्रशिक्षण की एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था है, और ये आदेश स्वयं डायरेक्टर कर सकता है, शासन की इसमें जरूरत नहीं है, उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त है, वो किसानों के 40-40 के ग्रुप यहाँ पर भेज सकता है। दूसरी योजना है SMAE, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन की ही योजना है, और इस योजना में किसानों को एक्सपोजर विजिट के लिए और ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टर भेज सकता है, वो भेजते भी हैं, और वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पर कम, क्योंकि जब डायरेक्टर ने देखा कि और जगह भेजते हैं तो वहाँ पर हमको 10,000 रुपये लगता है पर हेड खर्च करने पर, मतलब स्टेट से बाहर, और यहाँ पर केवल 4,000 रुपये लगता है, तो इन्होंने 4,000 वो भी जो है, जो हमारा जो खर्च है उसकी हम प्रतिपूर्ति कराते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम संस्था करती है, हम कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए इन दोनों योजनाओं में, प्राकृतिक खेती और दूसरा SMAE, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और इसका पुराना नाम जो है वो आत्मा है, आत्मा सबको याद रहेगा, तो इस योजना में आप उनको ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं।
सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू बद्री भाई। तो मैं समझती हूँ अभी ग्रुप आपके तरफ से आना शुरू होंगे, तो उसका भी पुण्य आपके अकाउंट में चला जाएगा। पुण्य ऐसी चीज है, दुआएं ऐसी चीज है जो दिखती नहीं पर कमाल बहुत करती हैं। तो अभी हम अंतिम चरण पे जा रहे हैं, और हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो हमारी विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और बहुत सुंदर रिट्रीट भी है जगदम्बा भवन हमारा पूना में, आप उसकी भी डायरेक्टर हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट दीदी ने कहा है कि जो बीके मीरा सोसाइटी से कनेक्टेड हैं वो यहाँ हैं, बीके जो मीरा सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, अगर यहाँ नहीं है जो हैं, और जो नहीं है उनको आप थोड़ा मैसेज दे देना, दीदी आपसे 7:30 से 8 दादी कॉटेज में मिलना चाहते हैं, तो आप सभी वहाँ एकत्रित होंगे। अभी हम ब्लेसिंग लेंगे हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी से।
ओम शांति। आज विशेष बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने सारे वैज्ञानिक और अधिकारी भाई बहन एक साथ बैठे हुए हैं, और आदरणीय राजू भाई जी जो कि एक लाइट हाउस कहो, माइट हाउस कहो, बन करके हमारे बीच में उपस्थित है। सुनीता बहन ने भी हल्के फुल्के रीति से आप सभी को खुश रखते हुए अपने मन की बातें चर्चाएं की है। विनोद भाई ने भी खुद जो किया कर रहे हैं वो आप लोगों के बीच में रखा। मनीषा बहन ने योगिक खेती कैसे शुरू हुई उसका समाचार सुनाया। कई भाई बहनों ने भी अपने अपने अनुभव सुनाए। राम खर्चे भाई जी ने भी सुनाया। मैं तो दो तीन बातें ही बताऊंगी कि मैंने प्रैक्टिकल खेती देखी, 50-100 किसानों की तो जरूर देखी। किसानों के खेती में मैं गई, उनकी फसल देखी, उनके जीवन को परिवर्तित हुआ देखा। किसान को क्या चाहिए, किसान कहो या इंसान कहो, चार बातें चाहिए। एक, मन शांत चाहिए, बराबर, और बड़ा शुद्ध चाहिए, हर एक चाहता है। फिर तो तन है वो स्वस्थ चाहिए। आजकल आप देखेंगे हर एक के तन को कुछ न कुछ अंदर अंदर वो फेस कर रहा है, भले कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। फिर पर्याप्त धन भी चाहिए। और चौथी बात, जनमाना संबंधी, चाहे वो अपना परिवार हो, रिश्तेदार हो, सब सुखी चाहिए, सब में अपनेपन की भावना चाहिए, एक दो को मदद करने की भावना चाहिए। तो हर एक को ये चार स्वास्थ्य चाहिए, चाहिए आप सभी को भी। लेकिन वर्तमान क्या है, चार में से तीन मिलता है, दो मिलता है, कभी एक मिलता है। और किसानों के लाइफ में तो हमने देखा जैसे चारों ही नहीं है। तन फिर भी ठीक होता है, मन तो कितनी बातों से भरा हुआ, वैर विरोध, इतने इतने जमीन के लिए भी कितना झगड़ा करते हैं ये किसान लोग, कोर्ट में जाते हैं, अंधश्रद्धाएं होती है, व्यसन होते हैं। घरों में भी आप देखेंगे क्या उनकी परिस्थितियां होती है। और धन के लिए तो कई बार हम सुनते हैं उनको गवर्नमेंट माफ कर देती है कर्जा सारा, लेकिन मैंने देखा कि ये खेती जो कर रहे हैं, शाश्वत योगिक खेती जो किसान कर रहे हैं, वो चारों ही बातों से संपन्न है। उनका एक ने मुझे कहा कि मुझे बहुत एसिडिटी की बीमारी थी, लेकिन योगिक खेती कर रहा हूँ, ठीक हो गया हूँ, बैंक में नौकरी भी करता हूँ, खेती भी करता हूँ। फिर कईयों ने कहा मन तो राजयोग से शांत हो ही जाता है, वो तो आपने कल से यहाँ देखा होगा, आपका मन सभी का शांत है यहाँ आने के बाद। किसी का मन कभी किसी कारण से अशांत हुआ तो थोड़ा राजू भाई को दिखाना, बेंज मेरा हो गया नहीं, हो ही जाता है, शांत भी हो जाता है, शुद्ध भी हो जाता है, उसमें सबके लिए प्यार भी आ जाता है, आनंद भी आ जाता है, और सबसे बड़ी बात हम स्ट्रांग होते हैं माइंडली। ये सारा राजयोग का फायदा जो भी करेगा उसको हो जाता है। लेकिन मैंने कई किसानों को देखा कि वो तन से स्वस्थ हो गए, मन से तो आराम हो ही गए, और धन भी उनके पास अच्छा आया। कई किसानों ने मुझे कहा कि हमारे खेती में आकर के लोग चीजें लेकर के जाते हैं और ज्यादा पैसा भी हमको मिलता है। पहले एक दो साल नहीं मिलता है, लेकिन बाद में मिल जाता है। अभी किसानों की खेती तो किसानों की है, लेकिन आप सभी को हम आप सभी से हम ये चाहना रखते हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत किसान आते हैं। आप खुद तो राजयोग करिए ही करिए, क्योंकि वैज्ञानिक माना वाइब्रेशन और अधिकारी माना ऊपर से ऑर्डर लेना, नीचे वालों को ऑर्डर देना, है ना? ये दोनों ठीक चलता है तो अधिकारी भी ठीक होता है, और कई बार हम देखते हैं इसमें गड़बड़ हो जाती है। देखो भाई और बहनों, हमारा सारा काम आज भी अभी भी वाइब्रेशन से ही चल रहा है। हम एक दो को देख रहे हैं, क्या है ये? हम सुन रहे हैं, क्या है ये? आज मेरा पेट ठीक नहीं है, कोई दिखाई देता है क्या? तो ये सारा ही काम वाइब्रेशन से चल रहा है, लेकिन वो हम रोज ही अनुभव करते हैं, और राजयोग के आधार से शुद्ध वाइब्रेशन, प्यार का वाइब्रेशन, अपनेपन का वाइब्रेशन, शांति का वाइब्रेशन, शक्ति का वाइब्रेशन। और मैंने देखा कि पौधों को जब हम प्यार से उनके पास जाते हैं और बात करते हैं, तो इंसान कभी सुनेगा या नहीं भी सुनेगा, लेकिन पौधे जरूर सुनते हैं। और पौधे सुनते ही नहीं, लेकिन वो अपने में धारण भी करते हैं, और उनकी ग्रोथ भी वैसे हो जाती है। मैंने कई फल देखे, फूल देखे, सब्जियां देखी, अनाज देखा। क्या देखा होगा, सबके ऊपर ना एक ग्लेजिंग होता है। और मैंने टमाटर को खुद देखा, 15 दिन रख करके टमाटर के ऊपर वो आ गया, हम मराठी में सुरकुती बोलते उसको ऐसे, लेकिन अंदर से वो खराब नहीं हुआ। मसाले का चावल हमने 2 दिन नारियल डाला हुआ बाहर रख करके देखा, जो योगी खेती का चावल था, कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार बहुत एक सुंदर परमात्मा शक्ति के द्वारा सुंदर व्याख्या मनीषा बहन ने बताई, राजयोग माना आत्मा और परमात्मा का मिलन, पिता और पुत्र का मिलन। पिता और पुत्र का मिलन होता है तो पिता से क्या मिलता है? पिता से प्यार मिलता, पिता से पावर मिलती, पिता से आनंद मिलता, साथ साथ प्रॉपर्टी मिलती। तो यहां पर भी राजयोग के द्वारा इंसान को भगवान से शांति भी मिलती, शक्ति भी मिलती, पावित्र मिलता, सद्भावनाएं मिलती, कल्याण की भावना मिलती, बदलने की ताकत मिलती, राइट रॉन्ग को समझने की शक्ति मिलती। रॉन्ग को हम ऐसा छोड़ते हैं जैसे ये मैंने छोड़ दिया, मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम सभी ओरिजिनल। राजयोग ये बताता है कि आप सभी ओरिजिनल आत्माएं बहुत शुद्ध हो। भाई जी ने देवी देवता बोला आपको, ये तो आप सबको मालूम है कि भारत स्वर्णिम भारत था, तो स्वर्णिम भारत में हम सब देवी देवताएं ही थे। यही भगवान हमको याद दिला रहा है, बच्चे आप वैज्ञानिक जरूर हो, लेकिन आप रियल वैज्ञानिक नहीं हो, आप अधिकारी रियल नहीं हो, वो आपका रोल है। लेकिन आप रियल कौन है? चेतना है, और बहुत सुंदर चेतना है, पिता परमात्मा की संतान है, ओरिजिनल सतो प्रधान आत्मा है। तो इन सब बातों को आप लोगों को शेयर करने का यही मतलब है कि आप सभी के कनेक्शन में बहुत लोग आते हैं। आप हमारे मराठी में कहते हैं, जे जे आपणा सी ठावे तेते इतरासी द्यावे शहाणे करून सोडावे सकळ जन जो आपको मालूम है आप दूसरों को दो। और दिए कैसे जलते दीपावली में, ये फिर ये फिर ये फिर ये, और इतने सारे हम चैतन्य दीपक बन जाएंगे तो ये सृष्टि जरूर स्वर्णिम भारत फिर से बन जाएंगी। तो मैं यही आप सभी से चाहती हूँ कि आप लोग खुद मेडिटेशन जरूर करो। मेडिटेशन का अर्थ ही है ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन। कई लोगों को लगता है मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करेंगे तो आप अपने काम से दूर हो जाएंगे, नहीं, ये मेडिटेशन हमें और अलर्ट करता है, एक्यूरेट बनाता है, ऑलराउंड बनाता है। भगवान है ना, तो भगवान इंसान को देवात्मा बनाता है, वो कोई परिवार छोड़ने के लिए नहीं बोलता है। तो इस प्रकार आप सभी राजयोगा मेडिटेशन जरूर कीजिए, और साथ साथ आपके संपर्क में जो किसान आते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई प्रोग्राम रखिए। हम बहनें आकर के उनको भी ये मेडिटेशन सिखा सकती है, और ऐसे बहुत सारा काम विद्यालय के द्वारा हो रहा है। आप सभी भी इन बातों को जानिए, मानिए और मानकर उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ओम शांति।
बहुत दिल से धन्यवाद सुनंदा दीदी, बहुत अच्छी तरह से आपने हमको एक आशीर्वाद के रूप में आगे क्या करना है, कैसे हमारे किसानों का तन मन धन जन सब कुछ, क्योंकि वो सुखी हैं, अन्नदाता सुखी भव बोलते हैं, आज अन्नदाता दुखी भव हो गए, तो फिर से उसको सुखी करेंगे तो हम भी ऑटोमेटिकली सुखी हो जाएंगे। और अभी एक मिनट बहुत दिल से परमात्मा को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हम सबको सिलेक्ट किया इतने सुंदर वातावरण में जहाँ बाहर गर्मी है और इतना मन शीतल तन शीतल, और पहाड़ों पे बिठाया तो इतने अच्छे प्लेस पे लेके आने के लिए, इतना अच्छा वातावरण देने के लिए, इतनी अच्छी बातें सुनने के लिए जो परमात्मा ने हमको मौका दिया है, तो उस ईश्वर पिता का हम बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। एक मिनट के लिए सांग चलेगा, आप सभी बहुत मन से उसके साथ जुड़ेंगे और अपने अंदर पावर भी फील करेंगे और उनको थैंक्स भी बोलेंगे। ओम शांति। फिर हम सभी जानकी उद्यान में जाएंगे, वहाँ शांति अनुभूति करेंगे।